बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम कुछ क्षण खड़े रहें और अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। अब जबकि हम अपने सिरों और हृदयों को उसके सामने झुकाए हुए हैं, किसी के पास कोई निवेदन है तो वे लोग अपने हाथ उठाकर प्रभु को बताएं और फिर अपना निवेदन मन में ही प्रभु के सामने रखें जबकि हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज रात हम इस अवसर को पाकर बहुत खुश हैं कि एक बार फिर से आपके पास आए हैं और हमारे पास ये आश्वासन है कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें मिलता है, यदि हम ये विश्वास करें कि जो कुछ हमने मांगा है वो हमें मिल गया है। और अब प्रभु हमारे अविश्वास का उपाय कर कि आज रात हम जो मांग रहे हैं उन्हें पाने के योग्य बन सकें। उनके हाथों के साथ ही मैंने भी अपने हाथ ऊपर उठाए हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप तो हमारी जरूरतों को जानते हैं और आप हमारी सबकी विनती आज रात सुने और स्वीकार करें। हम आज के इस निराशाजनक समय में और ऐसे बुरे समय में जिसमें दुनिया आज है, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें प्रोत्साहित करें। प्रभु, हमें आपकी अति पवित्र सहायता की आवश्यकता है। हमारी प्रार्थना है कि आप अपने वचन के द्वारा हमें ढांढस बंधाएं, ताकि हम जान सकें कि प्रभु यीशु के आगमन से ठीक पहले हमें किस प्रकार व्यवहार करना है। पिता, इस विनती को स्वीकार करें। हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप कृपया बैठ जाइए। आज रात फिर से यहाँ आकर मुझे खुशी हुई है और इसलिए भी खुशी है कि एक बार फिर अति अनुग्रहकारी प्रभु के बारे में हम फिर से बात कर सकते हैं। आज फिर से इस लेनटेक में आना अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ कितनी ही बार आया हूँ और यहाँ आना मानो घर आने के समान है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत से वस्त्र प्रार्थना के लिए रखे हैं। पिछली रात हमने अपनी नियमित चंगाई सेवा बंद कर दी थी और कार्ड आदि जमा करा लिए थे, क्योंकि दो सभाओं के कारण आप लोग काफी थक गए थे। आज रात हम इन वस्त्रों पर निश्चित रूप से प्रार्थना करेंगे और भरोसा करता हूँ कि प्रभु आप में से प्रत्येक को वह विश्वास देगा जिसके द्वारा आप मांगी गई विनती के अनुसार फल ग्रहण कर सकेंगे। कल की सभा में भाई मेल जॉनसन नहीं होंगे और उनका सुंदर गाना भी नहीं होगा। मैं उनकी मधुर आवाज की प्रशंसा करता हूँ जो प्रभु ने उन्हें दी है। और अब यदि कल आप आ रहे हैं, मैं आराधनालय से कह रहा हूँ, जेफरसन विले से मेरे कुछ मित्र यहाँ आ रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि फिलाडेल्फिया चर्च में प्रार्थना सभा होनी है जहाँ भाई मीड सेवक है। मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ भी सभा होनी है या नहीं होनी है। कितने बजे? 11 बजे। 11 बजे प्रार्थना होगी। मैं सोचता हूँ कि मैं 1:30, 2:30, 3 बजे तक मुझे यहाँ होना है और फिर शाम को 7 बजे दोबारा यहाँ सभा होनी है। अतः यदि आपकी अपने गिरजे में प्रार्थना नहीं होनी है तो आप सभी यहाँ पर सविनय आमंत्रित हैं। निश्चित रूप से हम आपको आपकी जिम्मेदारी से पीछे हटाना नहीं चाहते जो आपकी आपके गिरजे के लिए है, क्योंकि हमारा ध्येय ये नहीं है। हमारा उद्देश्य तो उनको थामना है जिन्हें अभी तक उद्धार नहीं मिला है, जिन्हें अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला है और जो इसकी जरूरत महसूस करते हैं। हम उनकी सहायता करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तब सभी गिरजों के जितने लोग बीमार और दुर्बल हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और आप अपने उन्हीं गिरजों को वापस लौट जाएं जहाँ से आप आए हैं। यदि आपको पवित्र आत्मा मिलता है और चंगाई मिलती है तो आप एक गवाही लेकर जाएं और दूसरों को बताएं। चाहे आपका गिरजा ऐसी बातों का विश्वास न भी करे, तब भी आप वहाँ जाएं। समझे, जहाँ बहुत प्रकाश है वहाँ प्रकाशमान होना सरल है। अगर हम चाहते हैं कि जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ प्रकाश चमके, इसी स्थिति में प्रकाश अपना उत्तम प्रभाव डाल सकता है। और भाई वेले, धन्यवाद। भाई वेले माइक ठीक करने लगते हैं और कहते हैं यहाँ इस तरह से खड़े होंगे, हम ध्यान रखेंगे कि आवाज लोगों तक इस तरह से पहुंचती रहे। भाई वेले सोच रहे थे कि आवाज ठीक से नहीं आ रही है, क्या बेहतर है? ठीक है, बहुत अच्छा। अब आज रात चूंकि चंगाई सभा नहीं होनी है, मैं थोड़ा जल्दी आपको छोड़ दूंगा। मैं हर रात आपसे यही कहता हूँ कि मैं 9:30 बजे तक समाप्त करने की कोशिश करूंगा और इस समय 9:05 है, समय पास आ गया है। तब तक मैं अपनी बात कह चुकूंगा, क्योंकि सुबह भी मैंने आपको 2 घंटे तक बिठा कर रखा था। शायद आप बहुत थक चुके होंगे और कल जब मैं शहर छोड़कर जाऊंगा तो बहुत खुश होंगे, मगर मैं चाहता हूं कि बस मैं 20 मिनट बातचीत करूं। मगर मुझे तब तक बोलना पड़ता है जब तक मैं थक ना जाऊं, और मुझे पता है कि उस समय तक आप भी थक चुके होते हैं। इस तरह से मेरी बात कभी भी खत्म नहीं हो पाती, मैं बस रुक जाता हूं ताकि कुछ आराम कर सकूं। अब आज रात मैं चाहता हूं कि आप पवित्र शास्त्र में से यशाया नबी की पुस्तक और उसका छठा अध्याय निकालें, और फिर हम पढ़ने से पूर्व परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वह अपने वचन पर आशीष दे, ताकि वचन हमारे लिए जीवंत बन जाए। हम कुछ क्षणों में सिर को झुकाएंगे। हम पहले वचन में से पढ़ेंगे और आप ध्यान से सुनिए।
In the year that King Uzziah died, I was.
जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके छह छह पंख थे। दो पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और दो से अपने पांवों को, और दो से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंट वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंट वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा अधिराज को अपनी आँखों से देखा है। तब एक साराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया, और उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, इस अत्यंत अनुग्रहकारी वचन को आज रात समझ पाने में हम सक्षम नहीं है, अगर हम आपकी सहायता मांगते हैं प्रभु, कि इस शिकागो नगर में एक बार फिर से सुसमाचार प्रचार हो सके। प्रभु, इस प्रार्थना को स्वीकार करें, और काश ये प्रभाव सदा कायम रहने वाला प्रभाव हो। इस विनती को स्वीकार करें, इसे हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब इसमें से मैं एक विषय चुनना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है प्रभाव। आप देखिए कि हम दूसरों को कुछ ना कुछ प्रभावित करते हैं। हम जो कुछ करते हैं उससे दूसरे प्रभावित होते हैं। हमारे व्यवहार, हमारी बातचीत हमारे जीवन से प्रभाव पड़ता है, और वह सब कुछ जो हम करते हैं उससे कोई दूसरा प्रभावित होता है। और आप अब जानते हैं कि बहुत से लोग गिरजे नहीं जाते। उनकी गिरजे के बारे में गलत धारणाएं हैं। वे सोचते हैं कि वहाँ गिरजे में जाने वाली स्त्रियाँ जादूगरनी हैं, और पुरुष काले पट्टे लटकाए शैतान हैं, और उन्होंने गिरजे में जाने वालों के प्रति गलत राय कायम कर ली है। मगर मैं आपको बताता हूँ कि वे क्या करते हैं। वे आपके जीवन को देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि पौलुस ने ये कहा था, हम परमेश्वर की लिखित पत्रियाँ हैं जिन्हें लोग पढ़ते हैं। जब आप सड़क पर होते हैं, या काम पर होते हैं, या जहाँ कहीं भी होते हैं, कोई आपको देख रहा होता है, और विशेष रूप से जब आप इस बात का इकरार कर चुके हैं कि आप मसीही हैं, तो वे आपको और अधिक ध्यान से देखेंगे, और उससे आपके चारों ओर रहने वाले लोग प्रभावित होते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम गलत प्रभाव छोड़ते हैं तो हम निंदनीय हैं। हम पर इतना ही नहीं, वरन मसीहत पर हम कलंक लगाते हैं जिसका हम दावा करते हैं। हम मसीह पर कलंक लगाते हैं, और अगर हम सोच लें तो कोई भी जन मसीह को कभी भी कलंकित करना नहीं चाहेगा। मगर गलत समय पर गलत व्यवहार उस व्यक्ति पर गलत छाप छोड़ता है जो आपको देख रहा है, जब आप मसीह कहलाने लगते हैं तो हर कोई आपको देखता है। आज रात हम जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, यानी प्रभाव पर, उसका संबंध पीछे से है। इस संबंध में वास्तविक पाठ यदि आप पढ़ना चाहें तो दूसरा इतिहास 26 अध्याय में है। वहाँ पर इस उज्जैया राजा का जीवन वृत्तांत दिया गया है। अब देखिए कि उज्जैया राजा बालकपन में एक चरवाहा था जो भेड़ों को चराता था। वह राजा का पुत्र था, मगर बाहर घूमना उसे भाता था। उसे जंगलों में घूमना बहुत अच्छा लगता था और वो चरवाहा बन गया था। उसे दाख की बारी बहुत पसंद थी और वह उन्हें उगते देखते रहना चाहता था। और इस नवयुवक को बड़े अच्छे वातावरण के प्रभाव में पाला पोसा गया था। उसका पिता अमस्या एक महान व्यक्ति था। जीवन के अंतिम दिनों में वह दूसरे नगरों से कुछ देवता ले आया था और उसका आत्मिक पतन हो गया था। परमेश्वर ने इसी कारण उसे धरती पर से उठा लिया। मगर इस नवयुवक को बड़ा अच्छा प्रभावशाली माहौल मिला था, क्योंकि उसकी माता यरूशलेम नगर की बेटी थी और उसका पिता विश्वासी था। अतः इस बालक को बहुत अच्छे प्रभाव में रखकर पाला पोसा गया था। और एक बच्चे को ऐसे बड़ा करना बहुत अच्छी बात है। और आप जानते हैं क्या, आपके बच्चे वे मुख्य आंखें हैं जो आपको देख रही हैं। जो कुछ आप करते हैं वे देखते हैं, और जो कुछ आप करते हैं बाद में वे उसकी नकल करते हैं, क्योंकि आप जो करते हैं वही उनके लिए उदाहरण बन जाता है। मुझे याद आ रहा है कि अधिक दिन नहीं हुए जब मैं लॉस एंजलिस में फुल गॉस्पल बिजनेसमैन की सभा में गया था। भाई ओरल रॉबर्ट ने विषय पर कुछ टिप्पणी करी थी और उन्होंने मुझसे कहा कि खड़े हो जाओ और इस बारे में, यानी प्रभाव डालने के बारे में कुछ कहो। मैंने कहा मुझे एक कहानी याद आ रही है जो मैंने कभी पढ़ी थी, जिसमें क्रिसमस की संध्या पर एक मसीही व्यक्ति अपने अड़ोस पड़ोस में उपहार देने जाता है। जिस किसी भी घर में वो गया उसने शराब पी, वो अगले घर में जाता और वहाँ भी शराब पीता। और जब तक उसने अपने सभी उपहार बांटे और दूसरों के दिए उपहार लिए, तो वापस लौटने में उसने सोचा कि मैं उद्यान में से होकर छोटे रास्ते से लौटूं। वहाँ तब तक 5-6 इंच बर्फ गिर चुकी थी और उसने पाया कि वो आड़ा तिरछा डगमगाता चल रहा है और सीधा नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वह शराब के नशे में था। उसने देखा कि उसके पीछे उसका छोटा 7 वर्षीय पुत्र आ रहा था, जो उसकी तरह से तेज नहीं चल सकने के कारण पीछे पीछे आ रहा था। और वो बालक अपने बड़े बड़े डग भरने की कोशिश करता इधर उधर डगमगाता आ रहा था। अतः वो रुक गया ताकि वह बालक उसके पास आ जाए और उसने उस बच्चे से पूछा, बेटे तुम इस तरह से क्यों चल रहे हो? उसने कहा, पापा मैं आपके पग चिन्हों पर पांव धर के चलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप देखिए कि यह एक उदाहरण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यह सच है कि अपने बच्चों की चाल आप ही निश्चित करते हैं। यदि आज हमारे अमेरिकी लोग हमारे बच्चों के लिए उनके आगे ऐसी मिसालें रख रहे हैं जैसे धूम्रपान करना, स्त्रियों और पुरुषों का शराब पीना, ताश खेलना घरों में और जुआ घर जाना, यदि ऐसा है तो अगली नस्ल वरन आने वाली पीढ़ी में हमारे लोग कैसे होंगे? वे तो नशेड़ी होंगे। और मैं सोचता हूँ कि सारी दुनिया ही लगभग आज ऐसी ही दशा में है। तब यदि ये पीढ़ी, ये नस्ल इस तरह की है तो आगे कैसी पीढ़ी उत्पन्न होगी? तब उसके बाद भी यदि कोई और पीढ़ी आई तो वो कैसी होगी? यदि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहा तो पूरी मानव जाति, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, नाश हो जाएगा, क्योंकि हम अपने को मार रहे हैं और दूसरों के लिए उदाहरण सामने रख रहे हैं कि वो भी ऐसा करें। आज मसीही लोग भी जो मसीह होने का दावा करते हैं, वे धूम्रपान करते, शराब पीते, चोरी करते और बेईमानी कमाते हैं। इसमें जरा भी आश्चर्य नहीं है कि आज मसीहत गिरावट के सबसे निम्न स्तर पर पहुँच चुकी है। यह उस प्रभाव का परिणाम है जो गिरजे के लोगों ने उन लोगों पर डाला है जिन्होंने अभी तक मसीह को नहीं पाया है। मनुष्य आज चाहता है कि बस उसकी गवाही बनी रहे और वो चाहे जैसा जीवन जीता रहे। यही कारण है कि आज पवित्र आत्मा का आप में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही एक है जो हमारे अंदर जीवन को स्थिर रखता है। तब आप स्वयं नहीं जी रहे होते, तब आपके अंदर मसीह रह रहा होता है। जब आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है और यदि आपके जीवन में उसे सर्वोत्तम दर्जा नहीं मिलता, तो याद रखें कि आपको पवित्र आत्मा मिला ही नहीं। क्योंकि यदि वो आप में है तो वो स्वयं अपने जीवन को जिएगा। तब आप अपने लिए कुछ नहीं होते, तब आप मृत हैं और आपका जीवन मसीह के द्वारा परमेश्वर में छुपा रहता है तथा पवित्र आत्मा की मोहर आप पर लग चुकी होती है। तब फिर आपके लिए कोई चारा बाकी नहीं रहता कि आप अपने लिए जो आप थे कुछ सोच भी सकें। अब इस नौजवान के बारे में हम पाते हैं कि उसके माँ बाप धार्मिक जन थे और उसे अच्छी शिक्षा मिली थी। जब वो 16 वर्ष का ही था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई और लोगों ने उसे राजा बना दिया, और वह उस शक्तिशाली सिंहासन पर जब बैठाया गया तो मात्र 16 वर्ष का था। और यदि आप उसका जीवन वृत्तांत पढ़ें तो पाएंगे कि वह अपने राज्य की राजनीति से बिल्कुल प्रभावित नहीं था। वह उस राय को नहीं मानता था जिसे सभी लोग मानते थे। पवित्र शास्त्र बताता है कि वह परमेश्वर की इच्छा जानकर ही कदम उठाता था। यही कारण था कि वह इस नवयुवक नबी यशायाह के लिए एक बड़ा उदाहरण बन गया था। राजा उज्जियाह के समय में ही ये जवान नबी यशायाह रहता था। चूंकि दोनों ही नवयुवक थे, वो राजा और वो नबी, अतः वे दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। यशायाह उसी के महल में रहता था और वह राजा की बाहों की ओर झुका बैठा करता था। और हम पाते हैं कि इस नवयुवक राजा का यशायाह पर काफी प्रभाव पड़ा था। वह यशायाह के लिए हीरो बन गया था, क्योंकि वह लोगों में कुछ भी मतभेद नहीं रखता था और उसने कभी भी किसी बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कि वह उसे पथ से इधर उधर कर सके। वह परमेश्वर और केवल परमेश्वर ही की सेवा करने के लिए दृढ़ निश्चय था, और वह एक भला और अच्छा व्यक्ति था जिसे अपना आदर्श बनाया जा सकता था। हम पाते हैं कि उसने मूर्ति पूजकों से कभी भी कोई समझौता नहीं किया जब वो चाहते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसने अपना राज्य कितना बड़ा कर लिया है और परमेश्वर उसके साथ था और उसे आशीषें दे रहा था। परमेश्वर हर उस व्यक्ति को आशीष देगा जो उसके वचन में बना रहेगा। बात यह है कि परमेश्वर हर उस मनुष्य को आशीष देने के लिए बाध्य होता है जो उसके वचनों में बना रहता है। हम देखते हैं कि यशाया को वास्तव में यह राजा बहुत पसंद आया था और राजा का राज्य फैलता गया। मैं सोचता हूं कि उसका राज्य सुलेमान के बाद दूसरे नंबर पर था, क्योंकि उसका प्रभाव मिस्र तक पहुंच गया था। नौजवान यशाया के लिए एक ऐसे मनुष्य को देखना बड़े प्रोत्साहन की बात थी जो परमेश्वर के लिए सभी कुछ करने को तैयार रहता था, और राजनीति आदि की परवाह न करते हुए भी वह राजा ठीक वचन में स्थिर बना था। वास्तव में वह यशाया के लिए एक अच्छा उदाहरण या प्रभाव बन गया था। वह नौजवान चूंकि परमेश्वर के वचन अनुसार चल रहा था और वचन के प्रति सच्चा था, इसलिए परमेश्वर ने उसे अति आशीषित किया था। अब हम पाते हैं कि इस राजा ने आज के कितने ही मसीही लोगों की तरह से किया। जब तक वो नम्र बना रहा, परमेश्वर ने उसे आशीष दी। मगर पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि जब वह सामर्थ्य हो गया, जब उसे सभी कुछ मिल गया और वो पूरी तरह आश्वस्त हो गया, तो अपने मन में फूल गया और तभी उसकी गाड़ी पटरी से उतर गई। और आज गिरजों के साथ भी यही स्थिति है। ऐसा हमेशा होता है कि जब मनुष्य सोचता है कि वह आत्मनिर्भर है, तो वह फिर प्रार्थना करना छोड़ देता है और अपनी सेवकाई के लिए फिर परमेश्वर की मंशा की प्रतीक्षा नहीं करता। यदि आप मेरे इस विचार को क्षमा करें तो मैं कहूंगा कि मैं एक उस लेखक से सहमत हूं जिसने कहा है, यही कारण है कि इस अंत समय की बेदारी वाले अनेकों प्रचारक चूर चूर होकर रह गए हैं। उसको तो शराब पीकर वचन प्रचार करता पाया गया और किसी ने कुछ और गड़बड़ी करी। ऐसा इसलिए हुआ कि वे सोचने लगे थे कि वे अब सामर्थी हो गए हैं, और ऐसा ही प्रभाव उन्होंने लोगों पर डाल रखा था। वे सोचते थे कि उनके छोटे से राज्य में लोग इस प्रकार से उनकी मुट्ठी में हैं कि वे जो चाहे कर सकते हैं और लोग ध्यान नहीं देंगे। मगर परमेश्वर देखता है, आप समझे, वही एक है जो ध्यान देता है। नबूकदनेस्सर की तरह से जब वो एक दिन यूं बोला था कि देखो मैंने कितना बड़ा साम्राज्य बना लिया है, और तभी उनके दूत ने उसे मारा था। चाहे कोई पुरुष, स्त्री, बिशप, कार्डिनल, कोई भी क्यों ना हो, जब आप ये सोचने लगे कि आप अब स्वयं अपने ऊपर आधारित हैं, सामर्थ्य हैं, तो अच्छा होगा कि सावधान हो जाएं और आप बचाव की सोचें, क्योंकि परमेश्वर आपको इस तरह नहीं चलने देगा, क्योंकि वह अपनी महिमा किसी को नहीं देता। नहीं श्रीमान, महिमा परमेश्वर सिर्फ अपनी ही चाहता है। कभी कभी परमेश्वर किसी मनुष्य को आशीष देकर उसे एक सेवकाई ऐसी दे सकता है जो दूसरे भाई की सेवकाई से अच्छी हो, अच्छी नहीं वरन कुछ भिन्न हो, और वो मनुष्य अपना सीना फुलाकर छाती चौड़ी करके डींग मारने लगे और ऐसे व्यवहार करे मानो आपको उड़ाकर फेंक देगा। और मैं समझता हूँ कि उसी वक्त से वह व्यक्ति मानो द्वार से बाहर किया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। ये राजा स्वयं को सामर्थ्य समझने लगा, हालांकि वो बड़ा भक्तिशील था। उसने सोचा कि वह अब सारी बातों के लिए घमंड कर सकता है, और यह कि वह अब जो मन में आए वही कर सकता है, उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मगर याद रखिए कि हम सर्वदा परमेश्वर के अधीन हैं। परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हम पाते हैं कि वह इतने अधिक घमंड से भर गया कि उसने सोचा कि वह याजक द्वारा किए जाने वाले काम को भी कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीषित किया था। अतः उसने धूपदानी ली और धूप जलाने को यहोवा के भवन में पहुंच गया। इस प्रकार वह अपने उत्तरदायित्व से हट गया। ऐसा ही मैं हमेशा इन फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन वालों से कहता हूं कि आप कभी भी प्रचारक बनने की कोशिश न करें। प्रचारकों को सारी बातें ठीक रखने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और तब भी हम बहुत कमताई के साथ अपना काम कर पाते हैं, और इसके लिए एक व्यापारी को लेना तो विशेष रूप से गलती होगी, जिसे इस कार्य के लिए बुलाया ही नहीं गया है। देखिए, जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी सीमाएं लांघ रहे होते हैं। आपको इससे सबक लेना चाहिए। बहुत से लोग आज ऐसे हैं जो आज रात मंचों से वचन प्रचार की सेवकाई कर रहे हैं, जिन्हें वहाँ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वे यह सब इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें कहीं का निमंत्रण मिल जाए, या कि वे मशहूर हो जाएं, या उन्हें दूसरों से कुछ अधिक प्राप्त हो जाए, या इस प्रकार करने से कोई आपकी प्रशंसा करे, पीठ थपथपाए या कुछ ऐसा ही करे। देखिए, कभी कभी वे याजक बन जाते हैं। यीशु ने कहा था, वे विधवाओं के घर जाते हैं और ऊंचे पदों पर आसीन होने की चाह रखते हैं और दिखावा करते हैं और बड़ी देर तक प्रार्थना करते हैं। उसने कहा था, तुम लोग बहुत दंड के अपराधी ठहरोगे। समझे, हमें कभी भी उस हालत में नहीं पहुंचना है। हमें सर्वदा ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने। ऊपर उठने का मार्ग स्वयं को नीचा रखने में है। आप स्वयं को नम्र और दीन बनाएं और वह आपको ऊपर उठाएगा, और यदि आप स्वयं को ऊपर उठाएंगे तो वह आपको निचाइयों में उतार देगा। अब यहाँ हम पाते हैं कि इस राजा ने उस सेवक का स्थान लेने की चेष्टा करी जिसके योग्य वो नहीं था। परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी, वह महान व्यक्ति बन गया था। सारी दुनिया के देशों के विरुद्ध उसने अपना राज्य अति सुदृढ़ कर लिया था। वे लोग आते, उसकी बड़ाई करते, उसे पशु भेड़े आदि भेंट दिया करते थे, और उसके पास चरवाहे थे, वो सभी कुछ था, दाख की बारियां थी। वह सुख विलास में रह रहा था, और तभी वह मन में फूल गया। हम पाते हैं कि एक छोटी कलीसिया तक या स्थानीय गिरजा भी अति नम्र होकर मन की सच्चाई से प्रभु की सेवा कर सकता है, और जब कोई उनकी सहायता कर दे और उनका आकार बड़ा हो जाए और अच्छा बड़ा गिरजा बन जाए, अथवा वह अपने को जरा बेहतर और बड़ा बनाने की चेष्टा करे, तभी उनके लोग अपनी तरक्की पर सीना चौड़ा करके चलने लगते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि यह बात एकदम गलत है। परमेश्वर ने इसराइल से कहा था, जब मैंने तुम्हें वहाँ खेतों में देखा था तब तुम उस स्थिति में भी सरगर्म थे, जब मैंने तुम्हें भोजन दिया, तुम्हारे सारे कष्टों को दूर किया, तब तुम गुनगुने बन गए। तब उसने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया था, और वह वेश्याओं की तरह से व्यवहार करके सारे लोगों को कहने लगी थी कि आओ मुझे देखो। और हम पाते हैं कि खुदा उनकी इस हरकत से जरा भी खुश नहीं था। इसराइल का ये बड़ा सामर्थी राजा था, और इसने भी स्वयं को उस जगह खड़ा करना चाहा जिसके लिए वह अभिषिक्त नहीं किया गया था। और हम पाते हैं कि याजकों ने दौड़कर उसे रोका और समझाया था, ये तेरा काम नहीं है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस काम के लिए परमेश्वर ने अलग से लोगों को मखसूस कर रखा है। काश सेवक और उनकी सेवकाई मखसूसियत के स्तर पर करी जा सकती। काश लोग समझ सकते कि सुसमाचार प्रचार का ये अर्थ नहीं है कि गिरजे में सदस्य संख्या बढ़ाई जाए, वरन ये उस कार्य के प्रति मखसूसियत है जिसके द्वारा परमेश्वर के राज्य में नए बालक जन्म लेते हैं। इससे कुछ मतलब नहीं, इससे कुछ सरोकार नहीं कि वे किस गिरजे में जाते हैं या कहां के हैं। मतलब तो है कि लोग नया जन्म प्राप्त करें। आज हम देखते हैं कि जब किसी मनुष्य को परमेश्वर खड़ा करता है और उसकी सेवकाई में वह अद्भुत कार्य प्रकट करता है तो उसे स्वीकार करने में लोगों को बहुत कठिनाई होती है। उसकी नकल करने वाले पैदा हो जाते हैं और वे लोग आकर कहने लगते हैं कि ऐसा है, वैसा है, और वे भी कुछ भिन्न भिन्न तरह की बातें करने लगते हैं। मैं एक व्यक्ति के बारे में जानता हूँ जो आज दुनिया में है, बड़ा भला मनुष्य है और वचन का अच्छा प्रचारक भी है। मैं कहूँगा कि वह असली भाई है। अधिक दिन नहीं हुए जब मैं उससे बात कर रहा था और वह उत्तेजना पाने को पवित्र आत्मा पाना समझता है और उसकी सेवकाई का सारा आधार सनसनाहट या उत्तेजना ही है। वे लोगों को अनंत जीवन के लिए बपतिस्मा देते हैं। उनकी मान्यता है कि ऐसे लोग नहीं मरेंगे। मुझे डर है कि वे इस मान्यता के साथ ऐसी शाखा पर बैठे हैं जहां से उतरना उनके लिए कभी भी संभव नहीं होगा, मगर ये बात गलत है। वचन बताता है कि मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वे थोड़े दिन का और दुख से भरा होता है और जीवित रहने के लिए मर जाना जरूरी है। और हमें मालूम है कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए यह निश्चित किया कि वह मरे और फिर उसका न्याय किया जाए। हम जानते हैं कि हमें मरना जरूरी है। मैं तो इस पुराने बूढ़े गंदे घर में कभी भी नहीं रहना चाहूंगा जिसमें रह रहा हूं, क्योंकि यह तो सभी प्रकार की बीमारियों को पकड़ लेता है। मैं तो वैसा चाहता हूं जो हाथों का बनाया हुआ न हो और परमेश्वर के स्वरूप में हो, जो इस वर्तमान डेरे की तरह भोगली जाति का न हो। मैं तो चाहता हूं जो परमेश्वर के हाथों का बनाया गया हो और रोग और दुर्बलता और मृत्यु उस पर प्रभावी न हो। अब देखिए कि जब भी परमेश्वर मुझे वापस बुलाना चाहे उसके अनुग्रह से मैं हर समय तैयार हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि जब धरती का ये डेरा शरीर का शरीर गिरा दिया जाएगा तो हमें एक और डेरा मिलेगा जो स्वर्ग पर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, जिसमें हम प्रवेश करेंगे और मृत्यु का उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं तो इस वर्तमान डेरे में रहना नहीं चाहता। आप इसमें किस तरह से रहना चाहेंगे? हम इसे छोड़कर जाने वाले हैं और मुझे इस बात की खुशी है। इसमें तो मानव जाति का वह पुराना बंधन यानी मृत्यु है। इसमें दुख, दर्द, पीड़ा है, बुढ़ापा है। ऐसी देह में कौन रहना चाहेगा? मुझे खुशी है कि एक अविनाशी देह मिलने वाली है। हमारे पास एक देह और है जो उसकी महिमा के द्वारा तैयार करी जा रही है, और जो ही इस पुराने खोल का जीवन समाप्त होगा, परमेश्वर का वह अनंत पवित्र आत्मा जो इसमें रहता है वह सीधा ऊपर उस मंदिर में चला जाएगा जहां वह अनंतता में रहेगा। क्या हम ऐसा ही कुछ पाना नहीं चाहते? जी हाँ श्रीमान। ओ मैं कितना खुश हूँ कि एक परमेश्वर है जिसने ये सारी बातें हमें सरल करके बताई हैं। हम यहाँ यही पाते हैं कि वे सारी बातें परछाई हैं। हम यहाँ प्रतिछाया के रूप में हैं। मैं यहाँ मंच से लोगों को चलते फिरते देखता हूँ, सड़क पर लोगों को चलते फिरते पाता हूँ। उनमें जीवन तो है मगर वह असली जीवन नहीं हो सकता क्योंकि उसमें मृत्यु शामिल है। दाऊद ने कहा था, अगर मैं मौत की वादी से होकर गुजरूं। अब देखिए कि छाया के लिए प्रकाश का होना जरूरी है। वहाँ काफी प्रकाश होना अवश्य है क्योंकि यदि अंधकार हो तो छाया बन ही नहीं सकती। समझे आप, अंधकार में इतना अधिक प्रकाश होना जरूरी है कि उसकी प्रतिछाया बन सके। अब ये इस पर निर्भर करता है कि आप मूल प्रकाश या छाया में से किसके प्रति आकर्षित होते हैं। एक अच्छे भले आदमी को मैं आज देखता हूँ और कुछ ही वर्षों के बाद उसके बाल सफेद होते और झुकते हुए कानों को देखता हूँ। एक सुंदर भक्तिभाव वाली लड़की को देखता हूँ जो परमेश्वर की प्रशंसा कर रही है, और कुछ वर्ष के बाद जब मैं फिर वहाँ जाता हूँ तो पाता हूँ कि उसके दो तीन बच्चे हैं और उसके कांधे झुक गए हैं। अरे, इससे तो पता चलता है कि इस देह में मृत्यु शामिल है। चाहे वह कितनी भी सुंदर सुदृढ़ क्यों ना दिखाई दे, उसमें अंदर मृत्यु भरी है। अब मैं देखता हूँ कि आत्मा का झुकाव किस ओर होता है। यदि वह प्रकाश की ओर है, ज्योति की बातें करता है, ज्योति का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह प्रकाश के संग। मगर यदि वह दुनिया की चीजों के प्रति झुका है, छाया से जुड़ा है, दुनिया से प्रभावित है, तो वह मृत्यु के बाद दुनिया के अंधकार से निकलकर एक और बाहरी अंधकार में चला जाता है। अतः आप देखें कि हम हैं ही क्या। हमें याद रखना चाहिए कि हम जो भी हैं वह परमेश्वर के अनुग्रह से हैं और हम में से कोई भी इस बारे में डींग नहीं मार सकता। हम सिर्फ उस प्रभु के सम्मुख भक्ति भाव प्रेम नम्रता सहित सिर झुकाकर उसकी भलाई के लिए उसकी प्रशंसा ही कर सकते हैं। और हम पाते हैं कि जब तक यह राजा ऐसा करता रहा परमेश्वर ने उसको आशीष दी, मगर अब वह ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि उसने अपनी बुलाहट को त्याग कर किसी दूसरे के लिए तय करी गई बुलाहट में हस्तक्षेप किया और उसने सोचा कि परमेश्वर ने उसे आशीषित किया है तो वह वैसा कर सकता है, उसके लिए सब ठीक है। कितने दुख की बात है कि हम ऐसी गलतियां करते हैं, कितनी बुरी बात है। आपको पूरी तरह से ईमानदार और निष्ठावान रहना है। आपको कभी भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक परमेश्वर वैसा करने को ना कहे और जब तक वह उस बात को प्रमाणित व प्रकट ना कर दे और आप जान ना लें कि परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए। अक्सर जो लोग परमेश्वर के चुने होते हैं, परमेश्वर पहले उन्हें बड़े संकट में जाने देता है और तब उनमें से अपने योग्य एक जन को उभार कर लाता है। ये ऐसे लोगों की बात नहीं है जो अपनी इच्छा से बहुत कुछ करना चाहते हैं या कुछ न कुछ करते रहते हैं। यदि इस उतावले पन में उन्हें कुछ दे दिया जाए तो आप सोच सकते हैं कि वे क्या करेंगे, मगर परमेश्वर तो अपने जन को स्वयं पकड़ लेता है जैसे उसने मूसा पौलुस आदि को पकड़ा था। उन्हें उसने नीचे गिरा दिया और फिर उन्हीं के जीवनों के द्वारा महिमा पाई और वे पवित्र आत्मा के कैदी बन गए। अब इस राजा उज्जैया के बारे में हम एक और बात देखते हैं। जब धूप जलाने के लिए अभिषिक्त लोगों ने उसे वैसा करने से रोका, जब उसे रोका गया तो वह क्रोधित हो गया। ओ, ये कितनी शापित बात थी जो उसने करी। जब कोई किसी को ये बताता है कि वह गलती कर रहा है और उसे परमेश्वर के वचन में से दिखा देता है कि वह गलती पर है, तब वह मनुष्य यह सोचकर क्रोधित हो जाता है कि वह जो चाहे कर सकता है और वह वचन को समर्पित नहीं होता। आपने ध्यान दिया कि राजा का क्या हुआ था? जब वो गुस्से की हालत में ही था, उसके माथे पर कोढ़ उभर आया था। उज्जैया के मुंह पर कोढ़ हो गया था और याजकों ने जब ये देखा तो तुरंत उसे मंदिर से बाहर निकाल दिया और वह कोढ़ी होकर मरा। वह महान जीवन जो अच्छी भली प्रकार से शुरू हुआ था कोढ़ी के रूप में समाप्त हुआ। जिस मनुष्य के जीवन को परमेश्वर ने प्रभावित किया था, उसे जीवन के बाकी बचे समय को अलग एक कोठरी में रहकर बिताना पड़ा। मैं आदर सहित यह कहना चाहूंगा, आज हमारे पास प्रचार क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग हैं, नवयुवक, अधेड़, बूढ़े लोग हैं, जिन्होंने बड़ी अच्छी तरह से सेवकाई का काम शुरू किया था और परमेश्वर को अच्छे फल दिखाए थे, मगर आज हम पाते हैं कि वे शराबी बन गए, स्तर से दिख गए, हमसे दूर दूसरे छोर पर पहुंच गए हैं। उनमें से कुछ तो विश्वास ही से मुकर गए हैं, कुछ धन के लोभी बन गए, कुछ ऐसी स्त्रियों के लालच में फंस गए जो उनकी पत्नियां नहीं थीं और उन्होंने दूसरे विवाह कर लिए और प्रत्येक गिरजे में इसी प्रकार होता रहा है और गिरजे कलंकित हुए हैं। हम एक दूसरे को बुरा नहीं कह सकते क्योंकि हम और हमारे सारे नामधारी गिरजे गलती पर हैं। हम पाते हैं कि ऐसे मनुष्य थे जो कभी परमेश्वर से बड़े प्रभावित थे, लोगों पर उनका अच्छा असर था, मगर जब वे आत्मसंतुष्ट सामर्थी हुए तो गिर गए। जब आदमी ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि वह परमेश्वर का प्रभाव लोगों पर डाल सके तो उसे निरंतर नम्र बनते चले जाना चाहिए। हम पाते हैं कि यह राजा कलंकित होकर एक कोढ़ी के रूप में मर गया। तब उस नवयुवक नबी के लिए यह एक पाठ बन गया कि वह किसी मनुष्य पर भरोसा ना करे वरन परमेश्वर की ओर ही ताकता रहे। उसने उदाहरण के लिए किसी मनुष्य को देखा था जो कि भला मनुष्य था, मगर बाद में उसका पतन हो गया था। आज रात हमारे लिए यह एक सबक है कि चाहे कोई मनुष्य कितना भी भला क्यों ना हो, हमें अपनी दृष्टि परमेश्वर पर लगाए रखनी है। चाहे वो मनुष्य पादरी, बिशप, नबी, कोई भी क्यों ना हो, वह गलती, कमियों, वरन पाप और मृत्यु से अछूता नहीं है। यीशु मसीह है, केवल वही एक है। इससे यशाया ने सबक सीखा कि परमेश्वर अपने जन के लिए काम स्वयं तय करता है। एक मनुष्य को यह अधिकार कदापि नहीं है कि वह कहे कि एक सेवक बनकर मैं अपनी जीविका अच्छी प्रकार चला सकता हूँ, या मैं सोचता हूँ कि मैं सेवकाई का काम सीख लूँ। मैं सोचता हूँ मैं ये करूंगा, वह करूंगा या कुछ और करूंगा। मैं सोचता हूं कि मैं इस वरदान की नकल कर लूं जो परमेश्वर ने इस व्यक्ति को दिया है। मैं भी बड़ी बड़ी सभा आदि कर लूंगा। लोग ऐसा सोचते हैं और आज हम बहुतायत से ऐसा होते देख रहे हैं। मगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यशायाह ने सबक सीखा कि परमेश्वर अपने जन का स्थान स्वीकार करता है, परमेश्वर ही उसे स्थापित करता है। परमेश्वर ने इसको राजा बनाया था, याजक नहीं बनाया था। उसे राजा की स्थिति में बने रहना चाहिए था। यशायाह ने एक पाठ सीखा कि आपको कभी भी दूसरे का स्थान लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब उसने देखा कि उसका महान हीरो कलंकित होकर मर गया है, तब यशायाह ने अनुभव किया कि उसकी सारी आशाएं जाती रही हैं और वह लगभग निराश सा होकर एक दिन प्रभु से इस विषय पर बात करने मंदिर में गया और तब ही उसे ये दर्शन मिला। मंदिर में उसने उस परमेश्वर को देखा जिसे देखने की इच्छा उसे सदैव से रही थी। दर्शन में उसने देखा कि परमेश्वर एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा है और स्वर्ग में बहुत ऊंचे पर वो है और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया है। इस दर्शन में उसने देखा कि प्रभु का सिंहासन बहुत ऊंचे पर धरती के सारे राज्यों से ऊपर है। जब वो दर्शन में था तो उसने उस परमेश्वर को देखा जिसकी ओर से सर्वदा देखना चाहिए था। तब हमने देखा कि स्वर्गीय साराफ मंदिर में इधर उधर उड़ रहे थे। वास्तव में साराफ या सेराफिम्स के लिए इब्रानी भाषा में शब्द है बर्नर्स। धूप जलाना और बलिदान चढ़ाना उन्हीं के द्वारा होता था। ये स्वर्गदूतों से थोड़ा ऊपर स्तर के होते हैं और जब तक बलिदान उपलब्ध है ये पापियों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं कि पापी जन बलिवेदी तक जा सके। ये साराफ या विशेष रूप से इन बर्नर्स का विशेष काम है कि वे सर्वदा परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। वे करूबों की तरह से ही सर्वदा परमेश्वर के सामने रहते हैं। जब इस नबी ने परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर अनुभव किया और आंखें खोली तो यह दर्शन पाया। आप देखिए कि उसे पैदा ही इसी उद्देश्य से किया गया था कि वह जब आंखें खोले तो यह सब देखे। यह सब ऐसा था मानो धरती से उठाकर उसे उसके स्वप्न वाले देश में पहुंचा दिया गया है और उसने परमेश्वर और उसके सिंहासन को बहुत ऊंचाई पर देखा। और तब उसने मंदिर में देखा कि ये सारा इधर उधर उड़ रहे थे और पुकार रहे थे, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर पवित्र है, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर पवित्र है। कैसा बदलाव व कैसा प्रभाव इससे इस नवयुवक नबी के ऊपर पड़ा होगा। उसने देखा था कि अच्छा भला मनुष्य बनने के बाद भी लोग गिर जाते हैं, मगर अब उसने परमेश्वर को और इन साराफों को देख लिया था और उस विशेष रीत को देखे जिससे ये साराफ ढापे गए थे। दो पंखों से वे मुंह, दो से पांव ढांपे थे और दो से उड़ रहे थे। परमेश्वर पूर्ण रूप से पवित्र है। जरा ध्यान दें कि स्वर्गदूतों तक को प्रभु के सामने रहने पर अपना चेहरा ढांपना पड़ता है। मेरे भाई, मेरी बहन, मुझे आश्चर्य है कि क्या कभी हमने इस बात पर ध्यान दिया है। जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए पवित्र दूतों को मुंह ढांपना होता है और आदर व भक्ति भाव धारण करना होता है, मगर हम आज देखते हैं कि वे लोग जो स्वयं को मसीही जन कहते हैं उनके पास परमेश्वर के लिए, उसके वचन, उसके लोगों, प्रभु की सेवकाई, किसी के प्रति जरा भी आदर मान नहीं होता। वे लोग पुनरुत्थान के समय पर कहां खड़े पाए जाएंगे। पवित्र शास्त्र कहता है कि धर्मी लोग बड़ी कठिनाई से उद्धार पाते हैं तो पापी और अधर्मियों का क्या होगा। साराफों को जो स्वर्गदूतों में भी ऊंचे स्तर के हैं और उसकी करुणा के सिंहासन के सामने रहते हैं, जो वेदी पर धूप जलाने की सेवा करते हैं, उन्हें उसकी उपस्थिति में बने रहने के लिए अपना मुंह ढांपना पड़ता है। परमेश्वर वहाँ ऊंचे सिंहासन पर आसीन है और ये क्रूर चारों ओर दिन रात पुकारते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर पवित्र है। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं। ध्यान दें कि दो पंखों से उन्होंने अपना मुंह ढांप रखा था। क्यों ऐसा था? हम आज देखते हैं कि लोगों में जरा भी भक्ति भाव नहीं है। लोग गिरजों में जाते हैं और जहां सुसमाचार प्रचार किया जा रहा होता है वहां बैठकर गपशप करते, हंसते, बातचीत करते और उपहास उड़ाते रहते हैं। कोई भक्ति भाव नहीं है। वे सड़कों पर मिलते हैं और आप उनसे किसी तरह के आदर की आशा नहीं कर सकते। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर लोगों का आदर करना कम से कम मसीहत की मांग तो है ही। आपको कहना चाहिए कुछ ऐसा, गुड मॉर्निंग भाई, या कुछ ऐसा ही कहना चाहिए। कुछ लोग उत्तर देंगे, हेलो प्रचारक। ओ, ऐसा होना तो साधारण बात हो गई है। याद रखिए कि यीशु ने कहा था कि जो तुम इनके साथ करते हो वह मेरे साथ करते हो। जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को भी ग्रहण करता है, और जो कोई उन्हें ग्रहण करता है जिन्हें मैं भेजता हूँ तो वह पिता को भी ग्रहण करता है। जो तुम उनके साथ करते हो मानो वह तुमने मेरे साथ किया है। और क्या आप जानते हैं कि अभक्ति या भक्तिहीनता क्या होती है? इसका मतलब है वे परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति सचेत नहीं है। दुनिया इतनी साधारण और धर्म इतना नीचे जा चुका है कि आदर सम्मान जरा भी बाकी नहीं बचा है। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। उन सिपाहियों को देखिए। हम आज रात सोच सकते हैं कि उन सैनिकों के लिए ये कितनी भयंकर और असावधानी की बात थी जिन्होंने हमारे यीशु मसीह के मुंह पर थोड़ा लपेट दिया था। इसलिए कि यदि वह नबी है तो मन की बातें बता सकता है, इसका मजाक उड़ाया था। उन्होंने उसके मुंह को चिथड़े से ढांप कर वहाँ दालान में बिठा दिया और एक छड़ी उसके सिर पर मारी, और फिर दूसरे ने उस छड़ी को लेकर उसके सिर पर मारा और पूछा कि अगर तू भविष्य दिखता है तो बता कि हम में से किसने तुझे मारा है। देखा, कोई आदर सम्मान उनमें नहीं था, उनमें जरा भी नैतिकता नहीं थी। मगर वो महिला जिसने उसके वस्त्रों को छूकर चंगाई पाई थी, उसके पास काफी विश्वास। आप देखिए कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति सचेत रहना जरूरी है। ये पांचों इंद्रियां जो हमारे पास हैं, यही हमारी छोटी सी दुनिया है, मगर परमेश्वर ने हमें ये इसलिए दी थी कि हम इस धरती पर जीवन बिता सकें। मगर इनके अलावा भी और ज्ञानेन्द्रियां हैं जो दूसरे आयामों की हैं। परमेश्वर हमेशा मौजूद रहता है। हम यदि याद रख सके तो अच्छा हो कि जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर का दूत सर्वदा उसके संग रहता है। आज रात इस भवन में यीशु मसीह मौजूद है। आज रात इस भवन में स्वर्गदूतों की एक बड़ी सेना चारों ओर खड़ी है। आप उन्हें देख नहीं सकते, मगर उनकी मौजूदगी के प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं कि वे यहाँ हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वचन सही नहीं है, और यदि वचन सही नहीं है तो फिर परमेश्वर सही नहीं। पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत उनके संग रहते हैं, जो उसका भय मानते हैं वे उन्हें छोड़ते नहीं। वचन कहता है कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम में जमा होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। ऐसा है तो वो फिर ऐसे आयाम में है जिसमें हम उसे देख नहीं सकते। हमारी पांचों चेतना या इंद्रियां उससे संपर्क नहीं कर सकती। यीशु मसीह यहाँ उपस्थित है। अगर हम उसकी उपस्थिति के प्रति सचेत रह सकें, वह यहाँ है। न केवल यहाँ, वरन जब आप सड़क पर जा रहे होते हैं या कहीं भी होते हैं, वह वहीं होता है। आप जो विश्वासी बन गए हैं और परमेश्वर का भय मानते हैं, आप जहाँ भी हो वो आपके संग होता है। परमेश्वर के दूत आपके साथ साथ चलते हैं। याद रखिए, जो कुछ आप करते हैं या जो कुछ भी आपके विचारों में आता है वे सब देखते रहते हैं, और वे आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। अतः हमें इस बाबत सचेत रहना चाहिए। जब आप इस बारे में सचेत नहीं होते तभी मनमाने ढंग से व्यवहार करते हैं। अतः बहुत से लोग आज प्रभु यीशु की उपस्थिति के प्रति सचेत नहीं रहते। यही कारण है कि उनके साथ ऐसी बातें होती रहती हैं, जैसी कि आज हमारे सामने है। ये अच्छी बात नहीं है। काश हम दाऊद की तरह से कह सकते, मैं सदा यहोवा को अपने आगे रखता हूँ। ओ, मुझे ये अच्छा लगता है, प्रभु सर्वदा मेरे सामने रहे। जहाँ भी वो जाए मैं उसके पीछे पीछे चलूँ। जहाँ कहीं मैं जाऊँ उसकी मौजूदगी का एहसास होता रहे। दूसरे शब्दों में दाऊद ने कहा, प्रभु मेरे आगे आगे चल रहा है। यीशु ने कहा है कि मैं न कभी तुझे छोड़ूंगा न त्यागूंगा। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। वह हमें छोड़ नहीं सकता, उसने ऐसा वादा किया है। इन सभाओं का यही उद्देश्य है, और मेरे भाइयों यही कारण है कि मैंने अपनी सेवकाई नामधारी गिरजों से बाहर रखी है। मेरी चेष्टा है कि लोग देखें कि यीशु मसीह आज भी जीवता है तथा यहाँ मौजूद है। यह बात प्रत्येक विश्वासी जो किसी भी नामों वाले गिरजे में हो और विश्वास करता हो वो जान ले। दाऊद कहता है कि मेरा प्रभु मेरे आगे आगे है, मैं ना डिगूंगा। अब ध्यान दें कि उन्होंने दो पंखों से अपना मुंह ढांपा हुआ था, क्योंकि वह परमेश्वर की उपस्थिति में सेवकाई कर रहे थे। यदि परमेश्वर की सेवा करते समय उन्हें अपने पवित्र मुंह को ढांपना पड़ा था, तो एक प्रचारक को किस प्रकार का मनुष्य होना चाहिए? हमको शर्म से अपना चेहरा कितना अधिक ढांप लेना चाहिए? हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? परमेश्वर पूर्ण रूप से पवित्र है। हमें निरंतर सचेत रहकर ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर हम नंगे हैं, पापी हैं। लेकिन यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को साफ कर देता है। अब देखिए कि उनके पांव दो पंखों से ढके थे, यह उनकी नम्रता को दर्शाता है। मूसा जब तक उस जलती झाड़ी में परमेश्वर से नहीं मिला था, वह इतना नम्र नहीं था। मगर उसने देख लिया कि सचमुच वह परमेश्वर है, क्योंकि उसने वादा किए वचन को कहा था। क्या आप समझ पा रहे हैं? मूसा जानता था कि अब छुटकारे का समय निकट है, और वहाँ अलौकिक प्रकाश स्वर्ग से उतर आया था, और उसने वादे को दोहराया और कहा, मैंने जो वाचा इब्राहिम, इसहाक और याकूब से बांधी थी, वह मुझे याद है। और मूसा ने अपनी जूती उतार दी। नम्रता उसका सारा आधार बन गई। उसने अपने जूते उतार दिए। पौलुस ने जब उसी प्रकाश के दूत को ऊपर देखा और उसे प्रभु कहकर पुकारा, तो वह धरती पर गिर पड़ा। उसने उसे पहचान लिया। नम्रता उसमें भर गई। अब मैं कुछ भी नहीं हूँ। आश्चर्य नहीं कि यशायाह चिल्ला उठा था, मुझ पर हाय, मैंने सेनाओं के प्रभु परमेश्वर को देखा है। हालांकि वो स्वयं भी नबी था, और पौलुस बड़ा मनुष्य था, अच्छी शिक्षा पाए था, मगर जब वह परमेश्वर की उपस्थिति में आया तो उसने स्वयं को नम्र और दीन बना लिया। और जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में आया तो उसने स्वयं को दीन कर लिया। वह नबी था और उसने परमेश्वर को, वचन को आदर सम्मान दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखिए। यूहन्ना जब वहाँ था और लोगों को बपतिस्मे दे चुका, तो उसने देखा कि स्वर्ग से एक ज्योति नीचे उतर रही है। वह पुकार उठा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के गुनाहों को उठा लिया जाता है। तब वो अत्यंत नम्र हो गया और यीशु पानी में उतरकर उसके समीप पहुंचा। अब उस दिन एक प्रश्न मुझसे पूछा गया, जो कि आपके दिमाग में भी आ सकता है। यीशु जब जल में उतरा तो यूहन्ना ने कहा, मुझे जरूरी है कि तुझसे बपतिस्मा लूं, तू मेरे पास बपतिस्मा लेने क्यों आया है? एक पुराने बैप्टिस्ट भाई डॉक्टर रॉय डेविस मुझसे कहा करते थे, जब मिशनरी बैप्टिस्ट चर्च में मेरी मखसूसियत हुई थी, तब उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखे थे। मैंने इस बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, बिली मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। आप देखिए कि यूहन्ना ने अपना बपतिस्मा खुद को लिया नहीं था, अतः यीशु ने यूहन्ना को बपतिस्मा दिया था, और तब यूहन्ना ने फिर कर यीशु को बपतिस्मा दिया, क्योंकि यूहन्ना यीशु को तब तक बपतिस्मा नहीं दे सकता था जब तक वह बपतिस्मा ना ले ले। मैंने सोचा था कि ये बात तो उचित जान पड़ती है, मगर लगभग दो वर्ष पहले एक दिन मैं बाहर जंगल में बैठा था, तब पवित्र आत्मा वो प्रकाश उतर आया और उसने मुझ पर प्रकट किया कि क्या हुआ था। अब ये बात थी जो वहाँ हुई थी। देखिए कि वहाँ दो अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति धरती पर खड़े थे। वहाँ यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था और यीशु था जो मसीह था। और दोनों मनुष्य जिनके पास उस समय का सुसमाचार था, जल में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए, उनकी आंखें मिली। यूहन्ना ने नम्रता सहित कहा, मुझे अवश्य है कि तुझसे बपतिस्मा लूं, तू क्यों मेरे पास आया है? अभी तो ऐसा ही होने दे। ये ठीक बात थी, क्योंकि हमें इसी रीति से सब कुछ पूरा करना है। अंग्रेजी में यहाँ बिहोवित शब्द प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है हमारे लिए उचित है। हमें इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यीशु परमेश्वर था और यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था। जब यीशु ने ये कहा तो वह तुरंत जान गया कि यूहन्ना नबी होने के कारण उसकी बात समझ गया है, क्योंकि वचन हमेशा नबी के पास ही आता है। क्योंकि व्यवस्था के अनुसार बलिदान किए जाने वाले मेमने को बलिदान चढ़ाने से पहले धोना जरूरी था, और यीशु को कुर्बानी से पहले जल में धोना जरूरी था। उसने कहा, आप तो ऐसा ही होने दे। ठीक बात थी, क्योंकि हमारे लिए इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। ओ, काश हम इसमें से पाठ के लिए एक विषय चुन लें और उस पर कुछ क्षण विचार करें। विश्वासी होने के नाते आज के समय के प्रकाश को देखने के बाद जिसमें हम रह रहे हैं, हमारे लिए उचित है कि हम सारी धार्मिकता को पूरा करें। पेंतेकोस्तल गिरजे के लिए ये उचित है कि वह पवित्र आत्मा की बुलाहट की ज्योति में सारी धार्मिकता को पूरा करें। यह उचित नहीं है कि हम स्वयं को दूसरे भाइयों से अलग रखें। यह उचित नहीं है कि हम अपना नामधारी संगठन बना लें और अपने भाई से कुछ मतलब न रखें जिसे हमारी तरह पवित्र आत्मा मिला है। ये हमारे लिए उचित नहीं है कि जब हम परमेश्वर को यहाँ चलता फिरता और अद्भुत काम करता देखें और ठीक उन्हीं बातों को पूरा करता देखें जो उसने कहा था, तो हम बुरा व्यवहार इसलिए करें कि अमुक व्यक्ति हमारे गिरजे का नहीं है। ये ठीक बात नहीं है। हमें मसीही होना चाहिए, भले मनुष्य और परमेश्वर से डरने वाले लोग होना चाहिए। हमें उस पार जाकर किसी भी मनुष्य से हाथ मिलाने के लिए तैयार रहना चाहिए और उसके बिस्तर से उसका कंबल खींच लेने तक का स्नेह हमारे अंदर होना चाहिए। जी हाँ, इस प्रकार हमारे लिए यही उचित है कि हम सारी धार्मिकता को पूरा करें। ऐसा इसलिए किया गया कि यीशु बलिदान किया जाने वाला मेमना था। यूहन्ना इस बात को जानता था, क्योंकि उसने उसके ऊपर प्रकाश उतरते देखा था। यूहन्ना ने स्वयं को बहुत नम्र और दीन बनाया, क्योंकि वह उस समय तक का सबसे महान व्यक्ति था। मगर जब उसने प्रभु यीशु को आते देखा तो कहा कि मुझे आवश्यक है कि तेरे हाथ से बपतिस्मा लूं। मगर जब उसने यूहन्ना से यूं कहा कि इसी रीति से हमें सारी धार्मिकता को पूरा करना है, तब यूहन्ना मुड़ा और परमेश्वर का सेवक होने के नाते, एक नबी होने के नाते, वो समझ गया कि उसे उस समय के वचन को पूरा करना है। क्योंकि उसे पता था कि वह बलिदान है, जैसा कि उसने कहा था। उसने कहा था, ये परमेश्वर का कुर्बान होने वाला मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। और मेमने को जल से धोना जरूरी था, इससे पहले कि वे याजक को बलिदान चढ़ाने के लिए दिया जाता। आमीन। हमारे लिए ये उचित है कि हम सारी धार्मिकता को पूरा करें। जब आप यीशु मसीह का नाम ग्रहण करते हैं, तो प्रत्येक उस स्त्री पुरुष को पापों से अलग हो जाना चाहिए जो मसीह का नाम ग्रहण करता है। हम आज पापों का इकरार इस प्रकार से करते हैं, मानो कह रहे हो कि मुझे ये पता नहीं था। उस पहले से हम बुझाते हैं। हम बस दो मिनट की प्रार्थना करते हैं और खड़े होते हैं। कुछ गलती करके हम कहते हैं, हे प्रभु, तू जानता है कि मेरा मतलब ये नहीं था, मगर अब मैं ठीक हूँ, हालेलुया, और बस चल देते हैं। नहीं भाई, ये पापों का इकरार करना नहीं है। आपको धार्मिकता धारण कर क्षमा मांगनी चाहिए। आपको उस गलती का इकरार करना चाहिए। आपको उसका सुधार करना चाहिए। आप उस तरह से नहीं कर सकते। यीशु ने कहा है कि जब तू वेदी पर जाए तो याद कर कि तेरे भाई के प्रति तेरे मन में कुछ भेदभाव तो नहीं है। पहले जाकर उससे मेल कर ले और तब अपनी भेंट चढ़ा। देखिए, हमारे लिए यही उचित है कि हम सारी धार्मिकता को पूरा करें। आप महिलाओं, आप जो बाल कटवाती और छोटे वस्त्र पहनती हैं, क्या आप जानती हैं आपके लिए यही उचित है कि आप अपने बाल बढ़ाएं और एक महिला की तरह से व्यवहार करें? आप जो छोटे वस्त्र पहनती हैं, उन्हें उतार कर ठीक तरह के वस्त्र पहनिए। आपके लिए यही उचित है कि आप मसीही जन की तरह से व्यवहार करें। ये ठीक बात है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि ये गलत है, एक स्त्री को ऐसा नहीं करना है। और आप पुरुषों जो धूम्रपान करते हैं, ये अनुचित है। और आप लोग जो अपनी पत्नी को ऐसा करने देते हैं और फिर कहते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, विवाह के समय की वह बड़ी वाचा अब समाप्त हो चुकी है जिसमें प्रेम, आदर व आज्ञाकारिता की बात थी। अमेरिका में स्त्रियों को अपना मार्ग चुनने की स्वतंत्रता है। हर क्षेत्र में उनके लिए मार्ग खुला है। पवित्र शास्त्र बताता है कि ऐसा ही होना है। वे कहते हैं कि देश में महिलाएं सबसे कुशल और सावधान वाहन चालक हैं। ये बात गलत है। मैं और मेरा बेटा देश में चारों तरफ घूमते हैं और हम एक कॉपी रखते हैं। हर बार जब सड़क पर गलती करने पर सीटी की आवाज सुनाई देती है, तब हम उसे पुरुष और स्त्री जो भी जैसा करता है उसके खाते में लिख लेते हैं। और देश भर में 300 सीटियों में से 281 स्त्रियों के नाम होती हैं। किस प्रकार से वो ऐसा करने देते हैं? कारण वे रिपोर्ट हैं जो देश में आती है। निश्चित रूप से सिपाही उन सुंदर स्त्रियों को गिरफ्तार नहीं करते अगर उन्हें उनके फोन नंबर मिल जाए। वे उन्हें जाने देते हैं और कुछ नहीं कहते। यही वजह है। आप देखें कि ये महिलाओं की दुनिया बन चुकी है। पवित्र शास्त्र बताता है कि ठीक ऐसा ही होगा। अतः मंच से प्रचारक भी ऐसा ही करता है। वह उनके विरुद्ध कुछ भी कहने से डरता है। अगर हमारे लिए यही उचित है कि हम सारी धार्मिकता को पूरा करें, कहीं इस प्रकार से कहा गया है, यहाँ आपको अपना यश और लोकप्रियता नहीं देखनी है। आप प्रेम में मसीह यीशु में सुसमाचार के दास हैं। आप कर्तव्य से बने कदी है और आप उसे छोड़कर और कुछ नहीं कह सकते जो पवित्र आत्मा आपसे कहता और प्रचार करवाता है और जो ठीक है। आप उसके प्रेम वश उसके कैदी बन जाते हैं। तब आप किसी बात की परवाह नहीं करते। आपको सारी धार्मिकता पूरी करनी होती है। एक सेवक भाई को और विशेष रूप से पिंतेकोस्तल भाई को जो कि औरों से अधिक जानता है सब कुछ कहना चाहिए बजाय इसके कि वह ऐसे ही हालातों को चलते रहने दे। अब यहाँ कुछ समय पहले एक बड़े मशहूर व्यक्ति ने आकर मुझसे कहा था, आप स्त्रियों को कुछ ना कहा करें। उसने कहा, आओ मैं आप पर हाथ रखकर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ते रहें और बस बीमारों की चंगाई के लिए प्रार्थना किया करें, क्योंकि लोग आपको नबी मानते हैं। मैंने कहा, यह तो मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं नबी हूँ। उन्होंने कहा, मगर लोग आपको नबी मानते हैं। आपको लोगों को ये बताना चाहिए कि वे किस प्रकार से महान आत्मिक वरदानों को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कहा, यही बात तो आज गिरजों के साथ है। उन्होंने कहा, लोगों से उनके बाल कटवाने के बारे में तथा ऐसी वैसी बातों के बारे में कुछ मत कहो। आपको तो उन्हें बड़ी बड़ी आत्मिक बातें सिखानी चाहिए। मैंने कहा, मैं उनको एलजेब्रा कैसे सिखा सकता हूँ जब वे ABC नहीं जानते। यह सच है। आपको कहीं से तो सुधार शुरू करना ही है। अतः एकदम नीचे से ही निर्माण शुरू किया जाए। कभी भी ऊपर से कुछ शुरू मत करिए, क्योंकि आधार खोखला है। भाइयों, आज यही गड़बड़ी है कि लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हमारे लिए यही उचित है कि हम सारी धार्मिकता को पूरा करें। अब इन दूतों पर ध्यान दीजिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, पौलुस और बाकी लोगों ने जब उस ज्योति को परमेश्वर की महिमा को देखा तो वे उसके सामने झुक गए। जी हाँ, उन्होंने उसको आदर सम्मान दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं को नम्र और दीन बना लिया था। और इन दूतों ने परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के बाद भी अपने मुंह पांव को छाप रखा था। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब हम जल्दी करें। बाकी के दो पंखों से वे काम कर रहे थे, उड़ रहे थे। अब देखिए कि वो परमेश्वर के कैसे अच्छे सेवक हैं। यह इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर के सेवक नबी को कैसा होना चाहिए। एक तैयार किया हुआ सेवक कैसा होगा? यशायाह ने धरती पर एक मनुष्य सेवक को देखा था। वह किस प्रकार से गिर गया था और अब वह इन दूतों को देख रहा था। तब परमेश्वर ने उसे एक सिंहासन और स्वर्ग का राज दिखाया। यही वो है जिसकी ओर देखते रहना है। तब उसे दिखाया गया कि उसकी उपस्थिति में रहने वाला सेवक किस प्रकार का होता है। और वहाँ उसने उन सारापों को देखा जो अपना पवित्र मुख और पाँव को ढांपे हुए थे और दो पंखों से वे अपना काम कर रहे थे। वे भक्तिभाव धारण किए थे और अपने काम में दीन और नम्र थे। आमीन। अगर एक तैयार किए गए सेवक को ऐसा ही नहीं होना चाहिए तो फिर मुझे नहीं पता। धार्मिक, नम्र, काम के प्रति दीन होना चाहिए। ओ, मैं आपको बताता हूँ, महिला की तरह जो यीशु को कुएं पर मिली थी, जिसने जब उसे पहचान लिया कि वह मनुष्य जो बोल रहा है वही परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ उपहार है, मसीहा है, तो फिर वह तुरंत क्रियाशील हो गई। वह अपना पानी का बर्तन भूलकर शहर को दौड़कर गई और कहने लगी, आओ और एक मनुष्य को देखो जिसने मेरे बारे में सभी कुछ बता दिया है, कहीं यह मसीह तो नहीं है। ओ, वो एकदम से कैसी हरकत में आ गई थी। पतरस ने जब यीशु के वचन को सुना जो साथ उसने उससे कहे थे, वह कश्ती में दूरी पर था जब पतरस ने उसकी बात सुनी। क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? और उसने जाल नदी में डाला और वह मछलियों से भर गया। तुरंत पतरस ने जाल फेंक दिया और वह हरकत में आ गया। और तुरंत वो प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु तू मेरे पास से चला जा, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। ऐसा ही यशायाह ने कहा था कि मुझ पर हाय, मैंने प्रभु परमेश्वर को देखा है और मैं तो अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। क्या आप नहीं देख रहे परमेश्वर की उपस्थिति वास्तविक विश्वासी पर क्या प्रभाव डालती है? हम तो पापों को स्वीकार तक करना नहीं चाहते। हम बस इतना कहते हैं, हम पेंटिकोस्टल हैं, हम बैप्टिस्ट हैं, हम प्रेस्बिटेरियन हैं और सब चलता रहता है। मगर एक वास्तविक सच्चा और परमेश्वर का बुलाया गया सेवक स्वयं को उसकी उपस्थिति में नम्र और दीन बना लेता है। वह वचन की आलोचना नहीं करता। देखिए कि यीशु की आलोचना किन लोगों ने करी थी? फरीसी लोगों ने, उनके पंथ ने, इन्होंने ही केवल उसकी आलोचना करी थी। मगर वो मनुष्य जो वास्तव में उसका सेवक बनना चाहता था, उसने स्वयं को दीन और नम्र बनाया और हरकत में आ गया। यीशु ने कहा था, तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बना दूंगा। जब पतरस ने देखा कि सच में वह तो परमेश्वर है, तो वह हरकत में आ गया। पवित्र शास्त्र बताता है कि उस अंधे मनुष्य ने जिसे चंगाई मिली थी, उसने यीशु का यश देश में चारों ओर फैला दिया था। जब उसने देखा कि परमेश्वर का प्रतिनिधि धरती पर है जो एक अंधे को ज्योति दे सकता है, तो वह परमेश्वर की महिमा करने लगा और सब जगह जाकर उसकी गवाही दी। और फरीसियों ने उसे पकड़ लिया, मगर उसको क्या अंतर पड़ने वाला था? जैसा मैंने आज सुबह बताया था कि उसने कहा, मैं धर्मशास्त्र के बारे में आप लोगों से तर्क नहीं कर सकता, ना ही उसे समझा सकता हूँ, मगर मैं एक बात जानता हूँ कि पहले मैं अंधा था, अब मैं देखता हूँ। वो हरकत में आ गया था क्योंकि उसने यीशु का यश सब तरफ फैला दिया था। हो सकता है कि आप उसकी सेवकाई का कार्य ना कर रहे हो और उस तरह से उसका यश ना फैला सके, मगर यदि आप ठीक जीवन बिताएंगे तो आपके जीवन से उसकी महिमा प्रकट होगी। पिंतेकोस्त के दिन वहाँ निर्धन लोग, मछली पकड़ने वाले, महसूल लेने वाले जैसे नम्र और दीन कार्य करने वाले लोग जमा थे। वे परमेश्वर के एक वायदे के पूरा होने की बात जो रहे थे और 10 दिनों से वहाँ उपरों की कोठरी में थे, और अचानक बड़ी आंधी का सा शब्द सुनाई पड़ा और सारा कमरा स्वर्गीय शब्द से भर गया जहाँ वे बैठे थे, और वे क्रियाशील हो गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वायदे को सत्य प्रकट होते देख लिया था। वह वायदा उनके सामने जीवन प्रकट हुआ और वही उन्हें हरकत में ले आया। जब परमेश्वर का वायदा पूरा हुआ, वह उन्हें हरकत में ले आया। मित्रों, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में पिछले 2 या 3 वर्षों में जो कुछ होता हमने देखा है, उससे प्रत्येक नए जन्म प्राप्त मसीही व्यक्ति को हरकत में आ जाना चाहिए? मगर ऐसा न होने का कारण ये है कि हम ये अनुभव नहीं करते कि यह सब परमेश्वर की ओर से है। उसके प्रति हमारे अंदर जरा भी आदर भाव नहीं है। हम बस जरा से उत्सुक होना चाहते हैं, छोटी छोटी बातें होते देखना चाहते हैं, जरा सी हलचल चाहते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम ऐसी बातें देखना और करना चाहते हैं। मगर जब हम पूरे हृदय से इस पर विश्वास करेंगे व इन बातों को आदर देंगे, तभी हम हरकत में आ पाएंगे। जब उस दिन वह स्वर्गदूत मरियम से मिला था, जब वह उस प्रात कुएं की ओर जा रही थी और उसने उससे कहा था कि तू बिना किसी पुरुष को जाने एक पुत्र जनेगी, तो इस बात ने तुरंत उसे क्रियाशील बना दिया था। वह एकदम से हरकत में आ गई थी और कहने लगी थी कि वह बिना किसी पुरुष को जाने एक पुत्र जनेगी। उसने परवाह नहीं करी कि लोग क्या कहेंगे। उसकी भेंट वास्तव में परमेश्वर के दूत से हुई थी और वही उसे हरकत में लाया था। वह सचेत थी कि पवित्र आत्मा का साया उस पर है और गर्भ में एक बालक की रचना कर रहा है। ओ काश हम इस बात को मान सके कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर है और हमारे अंदर विश्वास को उत्पन्न कर रहा है। वह भिन्न भिन्न तरह से स्वयं को हमारे ऊपर प्रकट करता है। बहुत से वरदानों से वो हमारे अंदर विश्वास पैदा कर रहा है कि दुल्हन को उठाए जाने का विश्वास मिल सके। इससे हमें हरकत में आ जाना चाहिए, मगर जैसा वो चाहता है, मुझे संदेह है कि हम उतने भक्तिभाव व नम्रता को धारण नहीं कर रहे हैं। आग का वो सतून जो प्रकट किया गया है, जो जीवन दिखाई दिया है, उससे इस अंत समय में सारी कलीसिया को हरकत में आ जाना चाहिए। उसके आने का चिन्ह बता रहा है कि वो द्वार पर है। इज़राइल अपने देश में पहुंच चुका है। यीशु ने कहा था कि जब अंजीर के पेड़ में पत्ते निकलने लगे तो ये जाति जाति न रहेगी, सारी बातें पूरी हो जाएंगी। जब इसराइल वापस अपने घर में देश में पहुंच जाएगा तब ये पीढ़ी मसीह की आमद को देखेगी। उस दिन फिलिस्तीन के एक रब्बी से मुझे ये पता लगा जो कि चौंकाने वाली बात है। इस वर्ष वहाँ फिलिस्तीन में एक ऐसी दाखलता उगते दिखाई दी है जिसे सैकड़ों सैकड़ों वर्षों में भी नहीं देखा गया है। और यहूदी लोगों का कहना है कि जब वह दाखलता फिर से उगती दिखाई दे तो समझ लो कि मसीहा रास्ते में है। वे बुद्धिमान ज्योतिषी जो बाबुल से वहाँ पहुँचे थे वे सितारों का अध्ययन किया करते थे, और जब वो अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि तीन सितारे एक कतार में हैं। हाम, शेम और यापेत वाले तारे जिनमें इनका जन्म हुआ था वे एक कतार में आ गए थे, और उन विश्वासी वैज्ञानिकों ने उन तारों का अध्ययन किया कि वे किस दिशा में चल रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि वे तारे यरूशलेम के ऊपर एक कतार में चल रहे हैं, यदि वे मजूसी बाबुल में होते तो यरूशलेम की ओर देखने के लिए वे ठीक पश्चिम की ओर देखते। जब उन्होंने उन तारों को एक कतार में यरूशलेम के ऊपर देखा तो वे जान गए कि मसीहा धरती पर आ गया है। महिमा हो। देख रहे हैं कि इज़राइल अपने देश में है और पवित्र आत्मा गिरजों पर उभेला जा रहा है। जब गिरजों के विश्व धार्मिक संगठन की खबरें मिल रही हैं, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट नामधारी गिरजे आपस में गठबंधन कर रहे हैं, तो मसीहा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, और परमेश्वर हमारे मध्य अपने वरदानों को भेजकर हमारे भीतर ऐसा विश्वास उत्पन्न करने की चेष्टा कर रहा है जिससे हम यहाँ से बाहर निकलकर एक दिन स्वर्ग में उठाए जा सके, बीमारों को चंगाई दे सके, अंधों की आंखें खोल सके और मुर्दों को जीवित कर सके। स्वर्ग में बड़े बड़े ऊपर चिन्ह दिखाए जा रहे हैं, स्वर्ग झुंड के रूप में आ रहे हैं। इसके बारे में महीनों पूर्व भविष्यवाणी कर दी गई थी, वैज्ञानिकों ने उन्हें देखा है और वे वहाँ आए, उनका विवरण चित्र पत्रिका में छपा है। ऐसा होने के महीनों पहले ही बता दिया गया था। सात स्वर्गदूतों ने यहाँ उतर कर कहा कि परमेश्वर की छह मोहरों का भेद खोला जाएगा, उसका पूर्ण प्रकाशन दिया जाएगा, और ये सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा इनके होने से पहले भविष्यवाणी करी गई थी। और वे लोग इधर उधर देखते और रहस्यपूर्ण दृश्य उन्हें दिखाई देते हैं, और वे उन्हें किसी तरह के अलौकिक प्राणी मान रहे हैं। वे उसे उड़ंत स्त्री और आकाश व पृथ्वी पर डरावने चिन्ह समझते हैं, मगर ये सारे चिन्ह इशारा कर रहे हैं कि प्रभु यीशु आ रहा है और द्वार पर है। अब एक दाखलता उगाई है, इसराइल का अपना देश फिर से बन चुका है, उसका अपना देश और अपना झंडा है। दाऊद का वो छह कोने वाला दुनिया का सबसे पुराना ध्वज फिर से लहरा रहा है, और ऐसा लगभग 2500 वर्षों में पहली बार हुआ था। उनकी अपनी सेना है, अपनी मुद्रा है, वे संयुक्त राज्य संघ के सदस्य हैं। पिछले 2500 वर्षों में पहली बार वो एक देश बना है। और जब वे वहाँ जमा हो रहे थे उस समय का एक चित्र में टेप मेरे पास है जिसे हम 3 मिनट्स टिल मिडनाइट कहकर पुकारते हैं। और वे लोग जो उन्हें वहाँ इजरायली देश में ला रहे थे उन्होंने उन बूढ़े यहूदियों से पूछा जिन्हें वे अपनी पीठ पर लाद कर ला रहे थे, क्या तुम यहाँ अपने पैतृक देश में मरने के लिए लाए गए हो? नहीं, हम मसीहा को देखने आए हैं। आमीन। जब आप इस प्रकार के सवालों को पूछे जाते देखते हैं तो जानिए कि वे परमेश्वर के कैलेंडर के हिस्से हैं। वो ये बताते हैं कि मसीहा आने वाला है। ए प्रभु, हमें नम्र बनना चाहिए, हमें भक्ति भाव और निष्ठा धारण करनी चाहिए। हमको कितनी कोशिश करनी चाहिए कि हम भटकी हुई आत्माओं को बचा सकें, बिखरे हुए बीजों को इधर उधर से जमा कर सकें, और जो भी इस बारे में हम कर सकें हम करें, मगर ऐसा करने के बजाय हम यही कहते हैं कि परमेश्वर की महिमा होवे। मुझे आज रात कहीं जाने का बोझ नहीं मिल रहा है, मैं सोचता हूँ कि घर पर रहकर आज मैं प्रार्थना सभा के प्रसारण को देखूंगा। यह सोती हुई लादुकिया की कलीसिया का काल है, वह धनी है। अरे बाप, हमारा यही हाल है, इससे हमें हरकत में आ जाना चाहिए। हमने यशायाह नबी की तरह से इन नामदारी गिरजों में स्वयं को ऊंचा समझते प्रशंसनीय बातें बनाते लोगों को देख लिया है। हम ठीक यशायाह की तरह जो उसने देखा था आज इन गिरजों में होते देख रहे हैं। उसने एक मनुष्य को देखा था जो कि परमेश्वर से आशीषित था, मगर इस पर भी वह घमंडी बन गया था और उसे परमेश्वर ने कोड़ से मारा था। अपने आप में घमंड करते इन नामधारी गिरजों में हम यही देख रहे हैं। वे कहते हैं हम सबसे बड़े हैं, हमारे पास दूसरों से अधिक सदस्य हैं, अपने में फूले हुए हैं। देखा, अविश्वास का कोड़ उन्हें मार रहा है और वे बाहर कर दिए गए हैं। हमें तो स्वर्ग से एक दर्शन को देखने की लालसा होनी चाहिए थी, जो हमें दिखाए कि यीशु मसीह हमारे मध्य में है और उसका प्रतिज्ञा किया वचन पूरा हो रहा है कि वह ऐसा ही करेगा। जी हाँ, ऐसा कुछ जिस पर मनुष्यों की बनाए रीति रिवाजों का कुछ प्रभाव न हो, वरन वह परमेश्वर ही से प्रभावित हो, ऐसा कुछ होते देखने की लालसा होनी चाहिए थी। हम पाते हैं कि राजा उज्जियाह की तरह से उन्होंने वचन को छोड़ दिया है और उसके बदले में मत और सिद्धांतों को अपना लिया है। वे स्वयं को उस पुराने समय के उज्जियाह के समान बना रहे हैं। वे परमेश्वर के सत्य वचन का इनकार करके गुप्त रीति से अभिषिक्त किए गए कार्यालय का काम स्वयं करने की चेष्टा कर रहे हैं। जिस प्रकार से धूपदान लेकर उस काम को उज्जियाह कर नहीं पाया था, वे भी बस उससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। एक मनुष्य जो मसीह जन होने का दावा करता है और वचन का इनकार करता है, वह उज्जियाह की तरह से है जो अपनी हैसियत से बाहर जाकर मानो हाथ में उज्जियाह की तरह धूपदान लिए है। एक मनुष्य जो यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेने का दावा करता है और परमेश्वर से आशीषित है, वह खड़ा होकर पवित्र शास्त्र की सच्चाई का इनकार करता है और एक मत या सिद्धांत के लिए उस वचन को परे हटा देता है। वह पाप के कोड़ से भरा है और उज्जियाह की तरह से अविश्वास से भरा है। उसे उसके कार्य क्षेत्र से हटा दिया गया था, मगर आप देखिए कि लोग उसको भरे रखना चाहते हैं और बुद्धि लगाकर कहते हैं मैं धर्मशास्त्र में PhD, LLD या वगैरह वगैरह हूँ। वे शिक्षा को वहाँ पवित्र आत्मा की मखसूसियत के बदले स्थापित करते हैं। आप देखिए कि इसी कारण एक मनुष्य पवित्र शास्त्र लेकर और धार्मिक बड़ा संगठन उसमें से कुछ लेकर कुछ हटाकर उसे कुछ इस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करता है कि वह बात आपको भली लगे। यह बुद्धिमत्ता है। यह इसलिए है कि उसने इस बात का अध्ययन किया है कि वह बाइबल की बातों को किस हिसाब से पेश करे कि वह उनकी अपनी धारणाओं के साथ मेल खाए। मगर मैं आपको कुछ बताता हूँ, जब परमेश्वर अपने वचन में उतर कर आता है तो वह न केवल उसको एक मत करके दिखाता है, वरन वह उसे जीवंत प्रकट करता है और प्रमाणित करता है कि वह सत्य है। वचन की यही सच्चाई है। ऐसा तभी होता है जब परमेश्वर स्वयं अपने बारे में कहता है। उस दर्शन का यशायाह नबी पर बहुत प्रभाव पड़ा, वह बहुत प्रभावित हुआ। अब याद रखिए कि वह एक मनुष्य को आदर्श बनाए हुए था, मगर जब उसने कुछ वास्तविक देखा, उसने एक मनुष्य का पवित्र जीवन देखा था, उसने उसे असफल होते और कोड़ी होकर मरते देखा था। यही सब कुछ आप अपने नामधारी गिरजों में होता देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वे सभी लोग कहाँ चले जाएंगे। अब ये बड़ा विश्व धार्मिक गिरजा संघ बन चुका है। यदि कोई गिरजा इसमें शामिल नहीं होता है तो आपात स्थिति में उस गिरजे को गिरजा ही नहीं माना जाएगा और कोई भी सेवक किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा नहीं दे पाएगा यदि वह उस विश्व चर्च यानी महासंघ का सदस्य नहीं होगा। ऐसा करने पर उसे मृत्यु दंड दिया जा सकेगा। यदि वह किसी को पवित्र शास्त्र से बाहर की शिक्षा देगा तो वह उनमें का ही व्यक्ति गिना जाएगा। ऐसा लूथरन गिरजे के नियमों में आज लिखा है। मैं उस लेखक का नाम भूल गया हूँ, मगर ये सच है। आपका गिरजा उपासना स्थल नहीं वरन लोगों को भर सकने का गोदाम बन जाएगा। देखिए कि उस पशु की छाप अभी भी प्रभावी है और हम उसे देख रहे हैं। ओ, ये समय है जब गिरजों को हरकत में आना चाहिए, वास्तव में आना चाहिए। अब उस दर्शन के प्रभाव पर ध्यान दीजिए जो उस नवयुवक भविष्यद्वक्ता के ऊपर पड़ा। उस राजा की असफलता को देखने के बाद उसने देखा कि परमेश्वर उस मनुष्य से क्रोधित हुआ और उसने अपनी करुणा उस पर से हटा ली और उसे कोढ़ी बना दिया। तब वो मंदिर में गया और उसने कहा, प्रभु परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू ही परमेश्वर है। मैं तेरी ओर न देख कर गलत चीज की ओर देख रहा था। और तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिखाया और न केवल दर्शन दिखाया वरन उसे जीवन प्रकट भी किया, क्योंकि वहाँ उसके मध्य में साराप चारों ओर उड़ रहे थे और उनके शब्द से वो मंदिर गूंज रहा था जब वे पवित्र पवित्र पुकार रहे थे। अब देखिए कि उसने कुछ वास्तविक देखा और वो स्वयं एक नबी था। नबी के पास ही सर्वदा परमेश्वर का वचन आता है, मगर कभी भी वह उसकी आत्मा तक नहीं पहुंच पाया। वह तो अपने हीरो उज्जियाह की ओर ही देख रहा था। वह तो मानो अपने पादरी ही को सब कुछ समझ रहा था। जब उसने देखा कि राजा ने वचन का पालन नहीं किया और उसने देखा कि वचन ने उस व्यक्ति को इसलिए डांटा कि वह उस काम को करना चाह रहा था जिससे उसका कुछ सरोकार न था, तो जानते हैं कि क्या हुआ? तब उसने ऊपर दृष्टि की और परमेश्वर प्रभु को देखा। क्या आप पंक्तियों के बीच में छिपे अर्थ को समझ रहे हैं? क्या आप पंक्तियों के बीच की भाषा पढ़ सकते हैं? क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? इस प्रभु यीशु ने ये वायदा किया है कि जैसा लूत के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। उसी परमेश्वर ने जिसने पवित्र शास्त्र रचा ये कहा है कि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है, और उसने कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। क्या आप मेरा मतलब समझ रहे हैं? तब निष्ठावान हृदय वाले उस मनुष्य ने परमेश्वर की महिमा को हरकत में आते जीवन प्रकट होते देखा, और उसने एक पापी की तरह से दुहाई दी और इकरार किया कि वह पापी मनुष्य है। उसने उससे पहले इतनी सच्ची और वास्तविक कोई भी चीज नहीं देखी थी। उसने स्वीकार किया कि वह पापी है। तब क्या हुआ? जब नबी पापों का इकरार करने लगा तभी पापों को धोने की सच्ची प्रक्रिया शुरू हो गई। जब तक लोग पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार नहीं होते तब तक इन चंगाई सभाओं को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने पापों और अविश्वास को मान लेंगे और उन गलतियों को मान लेंगे जो आप कर रहे हैं तभी परमेश्वर कुछ कर सकता है। मगर जब तक प्रायश्चित न किया जाए कोई सफाई नहीं करी जा सकती। जैसे ही यशायाह ने कहा मुझ पर हाय, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, तभी उसके जीवन में पापों की स्वीकारोक्ति आई। तभी वह करूब अंगारा लेकर आया। क्या आपने ध्यान दिया कि परमेश्वर पापों को साफ करने के लिए किसी धार्मिक शिक्षण संस्था का उपयोग नहीं करता? उसने किसी व्यवस्था या कानून की पुस्तक से उसे साफ नहीं किया, उसने उसे आग से साफ किया, शुद्ध किया। परमेश्वर जब अपने सेवकों को किसी सेवकाई के लिए नियुक्त करता है तो वह उन्हें पवित्र आत्मा व आग से शुद्ध करता है। परमेश्वर आग से शुद्ध करता है। वह पुस्तकों, शिक्षा से नहीं, बुद्धिमत्तापूर्ण विचारों से नहीं, या धार्मिक संगठनों से शुद्ध नहीं करता, परंतु वो अपने सेवक को पवित्र आत्मा की आग से शुद्ध करता है। अब देखिए कि शुद्ध करने के बाद ही सेवकाई का काम दिया जाता है। तब शुद्ध करने के बाद ही यशायाह को सेवा करने का कार्य सौंपा गया। पापों का इकरार करने के बाद और शुद्ध हो जाने के बाद ही शुद्ध यशायाह ने परमेश्वर को उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। जब यशायाह ने पापों का इकरार कर लिया और आग से उसे शुद्ध बना दिया गया, तब शुद्ध हुआ यशायाह सेवकाई के लिए तैयार था। अब वह तैयार हो चुका था कि दूसरों के लिए वह स्वयं उदाहरण बन सके। वह तब इसके लिए तैयार था कि उसका जीवन दूसरों को प्रभावित कर सके। मगर जब तक उसने पापों का इकरार नहीं किया था और वह शुद्ध नहीं किया गया था तब तक उसका प्रभाव दूसरों पर अच्छा नहीं था। वह तो बस उस राजा की कठपुतली बना था। अब वो शुद्ध हो चुका था, उसने पापों का इकरार कर लिया था, उसकी बुलाहट आ चुकी थी और अब वह एक नबी के रूप में सेवकाई करने भेजा गया था। और फिर परमेश्वर ने उसे उसकी पुस्तक के 66 अध्यायों में मानो पूरी बाइबल लिखने की सेवकाई दी। पूरी बाइबल में 66 पुस्तकें और यशायाह की पुस्तक में 66 अध्याय हैं। उसने उत्पत्ति से शुरू किया और बीच में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में लिखा, और यशायाह 65 और 66 अध्याय में सीधा वो सहस्त्राब्दी राज्य यानी मिलेनियम में पहुंच गया। ये ठीक बात है। उसने संपूर्ण पवित्र शास्त्र की रूपरेखा अपनी पुस्तक में दी है। क्योंकि जब उसने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा तो स्वयं को अति नम्र बना लिया था। तब उसने क्या किया? जब वो शुद्ध हुआ उसने स्वयं को नम्र और दीन बनाया। जब उसे उस सेवकाई के लिए अलग किया गया और उसने नबी की सेवकाई का काम किया तो उसने लाखों लोगों को प्रभावित किया। हमारे पास आज यशायाह की पुस्तक है जिसने उस समय से लेकर आज तक मनुष्यों को प्रभावित किया है। उसका प्रभाव आज भी जारी है। पवित्र शास्त्र कहता है उनके काम उनके बाद भी चलते हैं। जैसा कि पवित्र आत्मा ने पत्मुस टापू पर यूहन्ना से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहा कि तुझे बहुत से राजाओं, देशों, लोगों पर भविष्यवाणी करनी होगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आज भी भविष्यवाणी कर रही है। वे अपने काम से विश्राम पा चुके हैं मगर उनके काम आज भी जारी हैं। उनका जो प्रभाव था उनके बाद भी कार्यरत है, समझे? वास्तव में ऐसा ही है। और आज हम पाते हैं कि वही बातें आज भी प्रभाव डालती हैं। हमें प्रभाव डालना ही है। इससे पहले कि हमारा प्रभाव लोगों पर पड़े, हमें परमेश्वर को जान लेना है। हमें शुद्ध होना और नम्र बनना है। हमें अपने को बहुत दीन बनाकर ये जानना और सोचना है कि हम कितने छोटे हैं। आप कुछ नहीं हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, और हम सभी कुछ भी नहीं हैं। मगर वो प्रभु ही सब कुछ है। वह ही समस्त प्रशंसा के योग्य है। हे परमेश्वर के मेमने, तू ही प्रशंसा के योग्य है। हमें इस बात की जरूरत है कि हम फिर मंदिर में जाएं। हमें जरूरत है कि हम फिर से परमेश्वर की वेदी पर जाएं और अपने मनों में एक वेदी बना लें जिस पर हम स्वयं को समर्पित कर सकें। और तब हम देख पाएंगे कि सेनाओं का वो प्रभु यहोवा इन अंतिम दिनों में फिर से धरती पर आकर वही सब कर रहा है जो उसने तब किए थे जब वो पहले यहाँ आया था। तब आप सारी बातें समझ कर चिल्ला उठेंगे, मुझ पर हाय।
When the voice of God said, "Who'll go for us?" Then he answered, "Master, here, send me." Is that right? Amen. Let's sing it. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer me. Speak, my Lord. Speak, my Lord, speak, and I will answer, Lord, send me. Listen, friends, millions now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here am I. Now speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me. You love him?
क्या आप उससे प्रेम करते हैं? आइए हम अपने सिरों को झुकाकर इस गीत को गाएं।
The cold of fire.
आग के अंगारे ने नबी को छुआ। आइए हम इसे गाएं।
Making him as pure could be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, Master, here, send me. Speak, my Lord. Speak, my Lord, speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I will answer, Lord, send.
हे स्वर्गीय पिता, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सारा अविश्वास हमारे अंदर से साफ किया जाए, क्योंकि ये सच है कि लाखों लोग पाप में शर्मिंदगी की मौत मर रहे हैं। प्रभु, इससे हमारा क्या भला होगा कि हम बिना कुछ पाए, बिना कुछ मिले ही ये स्वीकारें कि हम सबने सब कुछ पा लिया है? इससे हमें क्या लाभ हो सकेगा कि हम अपनी बौद्धिकता से ये कल्पना करने की कोशिश करें कि हमें कुछ मिल गया है, जबकि हम जानते हों कि हमें कुछ भी नहीं मिला है? हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे भीतर से सारे अविश्वास को साफ कर दें। हमारे जीवन की सभी दुनियावी बातें हमसे दूर कर दें, ताकि हम प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध किए जा सकें। प्रभु, उस दिन रात देखे गए दर्शन से मैं ये जान गया हूँ कि इस शिकागो शहर के इस झुंड में दुल्हन का भाग प्रतीक्षा कर रहा है। प्रभु, मैं नहीं जानता कि मैं किस प्रकार से उसे पकड़ सकूं। मैं तो बस बीज बोता जा रहा हूं, जहां भी बो सकता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर, उनमें से आज रात यदि कुछ लोग यहां हैं जिनको अभी तक आपका अनुभव नहीं हुआ है, जिन्होंने परमेश्वर के राज्य को अभी तक जीवन प्रकट होते नहीं देखा है, जिन्होंने कभी ऐसे फल नहीं देखे हैं कि वे अपने जीवनों को पूर्ण रूप से वचनानुसार बना सकें, प्रभु होने दे कि आज की रात ही वह समय हो जब वे ऐसा कर सकें। पिता, इस विनती को स्वीकार कर हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब भक्ति भाव और निष्ठा धारण करें। मुझे विश्वास है कि आप मुझे भली प्रकार से जानते हैं। मैं सनकी नहीं हूँ, यदि हूँ तो मैं इस बात को जानता नहीं हूँ, और मैं नहीं सोचता कि परमेश्वर पागल लोगों को स्वीकार करता है। पिछले सारे वर्षों में और कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ घटित होता रहा है। मैं आपका भाई हूँ। मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि प्रभु ने मुझसे ऐसा कहा है, मगर मैं विश्वास करता हूँ कि ये पीढ़ी जो अब रह रही है दुल्हन के उठाए जाने की साक्षी होगी। यह कितना निकट है, मेरा विश्वास यही है। मुझे इसके अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए कि सारी बातें ठीक ठीक वचनानुसार पूरी हो चुकी हैं। याद रखिए कि सदोम के जलाए जाने से पूर्व अंतिम बात जो हुई उसे याद कीजिए। प्रभु मानवीय देह में प्रकट हुआ था। वह मनुष्य के रूप में आया था। उसने मांस खाया और गाय का दूध पिया और रोटी खाई और बछड़े का मांस खाया था। वहाँ पर उसने भोजन किया था, और इब्राहिम ने जिसने उससे बातें करी थी उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहकर पुकारा था। वो मानवीय देह में था। जी हाँ, वह एक उदाहरण दिखा रहा था कि वह अंतिम दिनों में क्या करने जा रहा था। यीशु ने इसका जिक्र किया था, और उसकी सेवकाई जो उसने करी उसे देखिए। पहली चीज जो उसने करी वो ये थी कि उसने इब्राहिम को दी गई वाचा का जिक्र किया। आप इस बात का धर्मशास्त्रीय पक्ष देख पा रहे हैं? देखिए कि उसने कहा कि मैंने तुझसे वायदा किया था और अब मैं उसकी पुष्टि करने आया हूँ। अब हम किस तरह से जान सकते हैं कि वादा पूरा होने वाला है? देखिए, वे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे जिससे तुरंत पहले कि सदोम पर आग बरसे, इब्राहिम और सारा वादा किए पुत्र के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। परमेश्वर मानवीय देह में उनके पास आया और उसने चिन्ह दिखाए, और वे वही चिन्ह हैं जिनका जिक्र यीशु ने किया कि उसकी आमद के समय वही चिन्ह दिखाए जाएंगे, और यीशु ही प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र है। और हम उन चिन्हों को पिछले 15 वर्षों से देखते आ रहे हैं, और इस पर भी गिरजों की स्थिति बदतर होती जा रही है। इसमें आश्चर्य नहीं है कि हम वास्तव में ये देख रहे हैं कि हम लालोकिया के काल में हैं। पवित्र आत्मा यहाँ है। हो सकता है यहाँ कोई उसका चुना जन हो। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते रहे हैं, मगर मैं इस समय वेदी पर लोगों को आने की बुलाहट दे रहा हूँ। मैं दोनों प्रकार के लोगों को बुला रहा हूँ, जो उसे ग्रहण करने की बात करते हैं और वो जिन्होंने अभी तक उसे ग्रहण नहीं किया है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ परमेश्वर के मंदिर में चलें जो आपके अंदर ही है। आप पापों का इकरार दिल से करें और कहें कि प्रभु परमेश्वर मुझे साफ कर, और दूत को अंगारे सहित भेजकर मेरा सारा अविश्वास मुझसे ले ले, ताकि आज रात मैं परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकूं, जैसा कि यशायाह ने अनुभव किया था जब उसे दूत ने छुआ था। मैं चाहता हूं कि आप लोग वास्तव में निष्ठावान बनकर ऐसा ही करें। काल के लिए हमें एक वायदा दिया गया है। हमें ये वायदा नहीं दिया गया है कि धर्मशास्त्र की बड़ी संस्थाएं हमें दी जाएंगी। देखिए कि इब्रानियों को 2000 वर्षों तक धर्मशास्त्रीय ज्ञान दिया गया था, मगर उनके नाश होने से पहले उन्हें एक चिन्ह दिया गया। लूत और उसके परिवार को कुछ दूसरा चिन्ह दिया गया था। उन्होंने भी उसी चिन्ह को देखा था। जब यीशु यहाँ धरती पर था तो उसने भी उन्हें वही चिन्ह दिया था। उसने वही चिन्ह इब्रानियों को दिया था। उसने वही चिन्ह सामरियों को दिया, मगर अन्य जातियों को वो चिन्ह नहीं दिया गया था। अभी अन्य जातियों के समय का अंत है, जैसा कि तब उनके समय का अंत था। अब अन्य जातियों की कलीसिया की बुलाहट का समय है। अब देखिए कि परमेश्वर अपना कार्यक्रम बदल नहीं सकता, क्योंकि वह अनंत और सिद्ध है। वह सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान और अनंत है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर वो खुदा ही नहीं है। अतः आप देखिए कि उसे वही अब करना है जो उसने तब किया था। इसलिए प्रत्येक पीढ़ी में लोग जान जाते थे कि वह स्वयं को प्रकट कर रहा है, क्योंकि इसका तरीका सदा एक सा रहता है। लोग जानते थे कि वह सदा एक सा है। यदि आज रात यीशु मसीह इस मंच पर खड़ा हो, यदि वह यहाँ खड़ा हो, तो वह वही करेगा जो उसने तब किया था जब वो यहाँ पहले आया था, ताकि लोग समझ सकें कि वह परमेश्वर का पुत्र है। अब वो यहाँ है। उसने वायदा किया था कि वह यहाँ होगा, और वह केवल अपनी उसी वाचानुसार कार्य करेगा कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। और डालियाँ इस बात का विवरण देती हैं कि उनको जीवन दाखलता के द्वारा मिल रहा है, अन्यथा उनमें कोई जीवन ही नहीं होगा। अगर यदि डालियों में जीवन है तो फिर वह वही जीवन होना चाहिए जो दाखलता में है। वह जीवन स्वयं ऊपर उठकर डालियों तक पहुंचता है। अब कुछ क्षणों के लिए भक्तिभाव धारण कीजिए, और स्वर्ग का परमेश्वर मेरी सहायता करे। जो वचन मैंने अभी प्रचार किया है वह आप ग्रहण कर सकें, कि वह विश्वासी यशाया जब ऐसी स्थिति में आया कि उसने उस मनुष्य का पतन देखा जो स्वयं को परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने की चेष्टा कर रहा था, तभी यशाया ने देखा कि परमेश्वर नीचे उतर आया है, और उस सत्यता को देखकर वह पुकार उठा, मुझ पर हाय, क्योंकि परमेश्वर ने वैसा होने की प्रतिज्ञा दी थी। उसने प्रत्येक पीढ़ी को यह वाचा दी। हमारी पीढ़ी में भी वह इस वाचा को पूरा कर रहा है। हम उसकी आमद के संबंध में सारी बातों को क्रमवार पूरा होते देख रहे हैं। अब क्या आप विश्वास करते हैं कि वो यहाँ है? अब काश वो मेरी सहायता करे। वहाँ कितने लोग बीमार हैं मैं जानना चाहता हूँ। हाथ उठाइए, आपके पास विश्वास है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप इब्रानियों की पुस्तक का वह लेख थाम लें, कि वह हमारा महायाजक है जिसे हम अपनी निर्बलताओं सहित छू सकते हैं। अब आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे स्वयं को छू लेने दे, और प्रभु आप भाई ब्रहम के द्वारा उत्तर दें, जैसे कि आपने अपने वास्तविक पुत्र के द्वारा वचन कहा था। वह भी मेरी ही तरह लेपालक पुत्र है, मगर आपने वायदा किया है कि आप अंत के दिनों में ऐसा करेंगे। प्रभु मुझे कुछ वास्तविक दिखाइए। आप प्रार्थना करें। स्वर्ग के परमेश्वर, इस आधार पर कि मैंने अपना हृदय इस शिकागो नगर में पूरी तरह उड़ेला है, जैसे कि जहां भी मैं जाता हूं ऐसा ही करता हूं, आप अपने वचन को जीवन प्रकट करें। जो पीछे की ओर ठीक मेरे सामने बैठा है, जिन्होंने अभी अभी हाथ उठाया था, वो नहीं, वो दूसरे सफेद कमीज वाले। ये आप अपने लिए नहीं, वरन किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे सेवक हैं। क्या विश्वास करते हैं कि मैं उनकी परेशानी बता सकता हूँ? उनको दिल की बीमारी है। यदि ये बात सच है तो हाथ हिलाकर बताइए। उनके लिए विश्वास कीजिए, अगर आप बस विश्वास कर सकें। मगर आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। मनुष्य को वफादारी से विश्वास करना चाहिए। इधर इस सिरे पर नीचे एक महिला बैठी है, दूसरी कतार में, दूसरे नंबर की कुर्सी पर। वे चर्म रोग से पीड़ित हैं। यह रोग संचार के कारण है। महिला, भूरे बालों वाली महिला, आप खड़ी हो जाइए ताकि लोग आपको देख सकें। जी हाँ, आप ही, और ये सच है। यह चर्म में रोग संचार के कारण है, और आपके शरीर में और भी जटिलताएं हैं। यदि ये बात सच है तो हाथ उठाइए। अब देखिए कि इन्होंने किसे छुआ है। मुझे नहीं, इन्होंने यीशु को छुआ है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। एक युवती यहाँ ठीक पीछे बैठी हैं, उनको एक कष्ट है, उनके सिर में गुंजन हो रहा है, और स्नायु संबंधी जटिलताएं हैं। श्रीमती पिफर आपका नाम है, क्या आप पूरे हृदय से विश्वास करती हैं? कृपया खड़ी हो जाइए। मैं आपको नहीं जानता, मगर यीशु मसीह आपकी मनोकामना को पूरी करता है। मैंने इन्हें जीवन में पहले कभी नहीं देखा, ये मेरे लिए अजनबी हैं।
It'll stop, don't worry. Your faith heals you.
ठीक हो जाएगा, चिंता न करें। आपके विश्वास ने आप
ये बिलीव,
क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप वही नहीं देख पा रहे हैं जिसका वायदा किया गया था? वह सज्जन वहाँ पीछे बैठे हैं, क्या आप वो प्रकाश नहीं देख पा रहे हैं?
He's very bad. He's had a tumor in his throat.
उनकी दशा बहुत खराब है, उनके गले में फोड़ा है।
He's had an operation. The doctor don't give him much hope.
उनका एक ऑपरेशन हो चुका है और डॉक्टरों ने अधिक आशावादी बात नहीं कही है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर देगा? श्रीमान स्टोनलेक, क्या आप इस चंगाई को ग्रहण करेंगे? क्या आप पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? ठीक है, कृपया खड़े हो जाइए।
Jesus Christ will make you well.
यीशु मसीह आपको चंगा कर देगा। यदि आप विश्वास कर सकें, यह युवती जो यहाँ खटोले पर लेटी है, आपके पास कोई प्रार्थना कार्ड नहीं है। इस समय यहाँ किसी के पास कोई कार्ड नहीं है। आपको लकवा मार गया है। क्या आप इन बातों को सत्य मानती हैं? क्या आज रात जो वचन आपने सुने वे सत्य हैं? अगर आप ऐसे ही पड़ी रहीं तो मर जाएंगी। मगर यीशु मसीह लकवे के रोगी को चंगा कर सकता है। क्या आपको विश्वास है कि वो ऐसा ही करेगा? यदि आप विश्वास कर सकें और इसे ग्रहण कर सकें तो आप चारपाई से उठकर यीशु मसीह के नाम में अभी घर जा सकती हैं और चंगी हो सकती हैं। वो उठकर आ रही है। वो लकवे की मारी थी, जरा कोई उठने में उनकी सहायता करें। तो स्वस्थ होकर यीशु मसीह के नाम में कुर्सी से उठकर स्वयं चलकर आ रही है। क्या आप पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? तब खड़े हो जाइए। सभा में से स्वयं चलकर आ रही है। प्रभु मुझसे बोल, मुझे अभिषिक्त कर। क्या आप पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? यहाँ एक और लकवे का मारा व्यक्ति था। एक लकवे का रोगी तो चारपाई से बाहर उठकर आ गया है और परमेश्वर की महिमा कर रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं? वो दूसरा कहाँ गया? सारी चारपाइयाँ खाली हैं, सभी उठकर खड़े हो गए, परमेश्वर की प्रशंसा हो गई। जब उस अंधारे ने नबी को छुआ, देखिए लकवे की मारी एक महिला मंच पर स्वयं चलकर आ रही है। परमेश्वर की प्रशंसा हो, उसकी स्तुति महिमा जय जयकार हो। यहाँ एक और लकवे का मारा मनुष्य मंच की ओर चलकर आ रहा है। भाई फिज देखिए किस प्रकार कदम उठाकर चलता हुआ आ रहा है। आइए परमेश्वर की प्रशंसा करें, अपने हाथ उठाइए और परमेश्वर की महिमा कीजिए।